आगे सबक देखिए भाई, वह ईदा अकर अल अब्दुल महजूर अलैहि बि सरिकति अशरति दराहिम बि ऐनिहा فإنه يقطع وترد السرقة إلى المسروق منه وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يقطع والعشرة للمولى وقال محمد رحمه الله تعالى لا يقطع والعشرة للمولى وهو قول زفر رحمه الله ومعنى هذا إذا كذبه المولى. بھئی گزشتہ سبق کے اندر قطع کی شرائط چل رہی تھیں بھئی، آپ نے پڑھا کہ قطع کے لیے چھ شرطیں ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ شرط ہے تو مشروط ہے، شرط نہیں تو مشروط بھی نہیں، تو یہ چھ شرطیں پوری ہوں گی تو تب چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی پوری نہ ہوئی تو پھر اس صورت میں چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. اور پہلی شرط آپ نے یہ پڑھی تھی کہ اس قطع کی وجہ سے چور کا چیزوں کو پکڑنے کا جن سے نفع ختم نہیں ہونا چاہیے، یا چور کے چلنے کا جن سے نفع ختم نہیں ہونا چاہیے. لہذا اگر چور کا بایاں ہاتھ پہلے سے ہی کٹا ہوا ہے یا شل ہے، یا چور کا دایاں پاؤں پہلے سے ہی کٹا ہوا ہے یا شل ہے، تو پھر چور کا دایاں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. اور دوسری شرط آپ نے یہ پڑھی تھی کہ قطع کے لیے خصومت شرط ہے، یعنی یوں کہیں کہ مطالبہ شرط ہے، یعنی مالک مطالبہ کرے یا مالک کا جو نائب ہے یعنی امین یا ضامن وہ مطالبہ کرے، پھر ہی چور کا ہاتھ کاٹا جا سکتا ہے، ویسے نہیں. اور تیسری شرط یہ ذکر ہوئی تھی کہ قطع کے وقت مسروق منہ کا موجود ہونا ضروری ہے، پھر ہی قطع کیا جائے گا، اگر وہ موجود نہیں تو قطع نہیں کیا جائے گا. اور چوتھی شرط آپ نے یہ پڑھی تھی کہ جس وقت قطع کیا جائے اس وقت بھی خصومت کا ہونا ضروری ہے، چاہے یہ خصومت ظاہراً ہو چاہے تقدیراً ہو بھائی، تو اس وقت خصومت کا ہونا ضروری ہے. اور پانچویں شرط آپ نے یہ پڑھی تھی کہ قطع کے وقت بھی نصاب کا کامل ہونا شرط ہے، جس طرح قضائے قاضی کے وقت نصاب کا کامل ہونا شرط ہے، اسی طرح ہاتھ کاٹتے وقت بھی اس چوری کے نصاب کا کامل ہونا شرط ہے. اور چھٹی شرط آپ نے یہ پڑھی تھی کہ قطع سے پہلے اگر چور نے یہ دعویٰ کر دیا کہ یہ مال میرا ہی ہے جس کو میں نے چرایا تھا، تو اس صورت میں بھی قطع ساقط ہو جائے گی. تو معلوم ہوا قطع کے وقت چور کا ملکیت کا دعویٰ نہ کرنا شرط ہے بھائی. تو یہ چھ شرطیں تھیں بھائی، اور صاحب ہدایہ نے ان کو صراحتاً ذکر تو نہیں فرمایا، لیکن جو مسائل وہ ذکر فرما رہے ہیں ان سے یہ شرطیں واضح طور پر مفہوم ہوتی ہیں بھائی. تو مسائل صاحب ہدایہ نے ذکر فرمائے، اور گزشتہ سبق میں ہم نے مسئلہ پڑھا تھا کہ امین یا ضامن جو ہے وہ بھی خصومت کر سکتا ہے، جبکہ امام زفر اور امام شافعی رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ امین یا ضامن جو ہے وہ قطع کے لیے خصومت نہیں کر سکتا. امام شافعی رحمہ اللہ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو امین یا ضامن ہے یہ مال کے مالک نہیں، تو یہ مال کو واپس لینے کے لیے سرے سے خصومت کر ہی نہیں سکتے، جبکہ امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ خصومت کر تو سکتے ہیں لیکن ان کی خصومت صرف مال کی حفاظت کے لیے ہے، لہذا قطع کے حق میں ان کی خصومت ظاہر نہیں ہوگی اور اس کی وجہ سے چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. اس لیے کیونکہ اگر ان کی خصومت کی وجہ سے چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو ان کو شریعت نے جو خصومت کا حق دیا تھا وہ تو مال کی حفاظت کے لیے دیا تھا، اور قطع کی وجہ سے تو مال کی حفاظت ہی ساقط ہو جاتی ہے، مال کی عصمت ہی ساقط ہو جاتی ہے، وہ مال محفوظ رہتا ہی نہیں. تو لہذا اس لیے ان لوگوں کی خصومت جو ہے وہ صرف اس مال کو واپس لینے کے لیے ہو سکتی ہے لیکن قطع کے لیے نہیں ہو سکتی، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ لوگ خصومت بھی کر سکتے ہیں اور ان کی خصومت قطع کے لیے بھی معتبر ہے. وجہ یہ ہے کہ جو چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے یہ کوئی خصومت کی وجہ سے نہیں کاٹا جاتا، खुसूमत की वजह से तो सिर्फ चोर का जुर्म जाहिर होता है, असल में तो वो हाथ काटने का मुस्तहिक हो चुका है चोरी की वजह से ही। जिस वक्त चोर ने चोरी की उस वक्त ही वो मुस्तहिक हो गया कि उसका हाथ काट दिया जाए। तो चोरी का ये फेल ही तकाजा करता है चोर के हाथ के काटने का, और ये लोग जो हैं ये खुसूमत कर सकते हैं ताकि ये माल इनको वापस मिल जाए और ताकि मालिक को उसका हक लौटा सकें, इसलिए क्योंकि इनमें से कुछ अमीन हैं और अमीन के जिम्मे होता है कि वो माल मालिक को वापस करे, और कुछ इनमें से जामिन हैं और जामिन के जिम्मे है कि वो माल वापस करे वरना उसको जमान देना पड़ेगा। तो लिहाजा ये इन लोगों का हक है कि ये खुसूमत करें। जब ये अपने हक की वजह से खुसूमत कर रहे हैं तो मालूम हुआ ये खुसूमत हर एतबार से मोतबर है, और जब ये खुसूमत हर एतबार से मोतबर है तो कता के हक में भी खुसूमत मोतबर हो गई। तो जब इन्होंने दो गवाह पेश कर दिए माल को वापस लेने के लिए तो इसकी वजह से चोरी भी जाहिर हो गई, और जब चोरी जाहिर हो गई तो अब यह अल्लाह का हक है कि चोर को सजा दी जाए और इसका हाथ काटा जाए। और बाकी इमाम जुफर रहमतुल्लाह फरमाते थे कि इस चोरी की वजह से माल की हिफाजत साकित हो जाती है, तो उसका जवाब भी साहिब हिदाया ने दिया कि जो माल की हिफाजत साकित होती है ये कता के साथ जरूरी है, क्योंकि हमारे नजदीक कता और जमान इकट्ठे नहीं हो सकते। तो जब भी कता किया जाएगा उसके साथ जरूरी तौर पर यह बात भी साबित हो जाएगी कि माल की इस्मत साकित हुई है। तो यहां पर जो माल की इस्मत साकित हो रही है वो असल में मकसूद नहीं है, वो जिमनन साकित हो रही है, उसके बगैर कता हो ही नहीं सकता। तो कता के साथ जरूरी है कि माल की इस्मत साकित हो जाए, यानी यूं कहें यहां पर माल की जो इस्मत साकित हो रही है वो जिमनन साकित हो रही है, वो जिमनन साकित हो रही है, जिमनन और तबअन साकित हो रही है। और जो चीज जिमनन और तबअन जो है साबित हो उसकी तरफ नजर नहीं की जाती, उसका एतबार नहीं किया जाता, लिहाजा इस बात को नहीं देखा जाएगा कि माल की इस्मत साकित हो रही है, बस चोर को उसके जुर्म की सजा दी जाएगी। भाई फिर यहां साहिब हिदाया ने एक एतराज का जवाब भी दिया था। एतराज यह होता था कि ये लोग जो खुसूमत करने वाले हैं इनमें से बाज अमीन हैं और बाज जामीन हैं, तो जब इन्होंने खुसूमत कर दी तो फिर भी चोर का हाथ नहीं काटना चाहिए, इसलिए क्योंकि मालिक मौजूद नहीं है। हो सकता है मालिक मौजूद होता तो शुबा पैदा हो जाता और कता साकित हो जाती। भाई किस तरह शुबा पैदा होता? कहते हो सकता है मालिक ये माल चोर को हिबा कर देता, या मालिक ये माल चोर के हाथ फरोख्त कर देता, या मालिक ये कह देता कि ये माल तो था ही चोर का, तो इस सूरत के अंदर कता साकित हो जानी थी। तो लिहाजा एतराज होता है कि अमीन या जामीन अगर खुसूमत करें और मालिक मौजूद ना हो फिर भी चोर का हाथ नहीं काटना चाहिए, क्योंकि अगर मालिक मौजूद होता तो शुबा हो सकता था। तो साहिबे हिदाया ने आपको बतलाया कि भाई अगर मालिक होता और वो यूं कह देता फिर शुबे ने आना था और फिर हाथ साकित हो जाती, लेकिन इस वक्त तो मालिक यहां मौजूद ही नहीं है तो यहां शुबा है ही नहीं। हां सिर्फ शुबे का एक इहतमाल है, शुबे का सिर्फ वहम होता है, और शुबे का वहम जो है उसकी वजह से हद साकित नहीं की जा सकती। भाई तो इसको शुबहतु शुबा कहते हैं कि शुबा होने का शुबा हो जाए, और शुबहतु शुबा की वजह से हद साकित नहीं होती बल्कि हकीकतन शुबा हो तो फिर हद साकित होती है। भाई और फरमाया ये इसी तरह है कि अगर आप इसका बरअक्स कर लें कि मालिक खुसूमत करता है और वो जो अमीन या जामीन है जिससे चोरी हुई है वो अगर मौजूद नहीं है फिर भी मालिक की खुसूमत की वजह से चोर का हाथ काटा जाएगा जाहिर रिवायत के मुताबिक। अगरचे यहां भी शुबा होता है कि वो अमीन या जामीन जिससे चोरी हुई है अगर वो यहां मौजूद होता तो हो सकता है वो कह देता कि ये चोर तो मेरा मेहमान था, इसको तो मैं खुद हिर्स के अंदर लेकर गया था, और जब उसने चोर को हिर्स के अंदर आने की इजाजत दे दी तो चोर के हक में वो हिर्स ना रहा और इस शुबे की वजह से फिर हद साकित हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद मालिक की खुसूमत से भी चोर का हाथ काटा जाएगा, क्योंकि जामीन और अमीन अगर मौजूद होते और वो इस तरह कहते फिर शुबे ने आना था, लेकिन अभी तो जामीन और अमीन मौजूद नहीं है तो शुबा मौजूद नहीं, शुबे का सिर्फ एक एहतमाल है, एक वहम है, और शुबे का वहम और एहतमाल जो है उसका कोई एतबार नहीं है, उसकी वजह से हद साकित नहीं हो सकती। भाई और फिर उसके बाद साहिब हिदाया ने मसला जिक्र फरमाया कि अगर एक चोर ने माल चुरा लिया और फिर इसका हाथ भी काट दिया गया और चोर ने अभी वो माल मालिक को वापस नहीं किया था कि उससे पहले ही एक दूसरे चोर ने इस पहले चोर से माल चुरा लिया, तो कहते हैं इस सूरत में दूसरे चोर का हाथ नहीं काटा जा सकता, ना ये पहला चोर खुसूमत कर सकता है और ना मालिक खुसूमत कर सकता है हाथ कटवाने के लिए। वजह यह है कि जब पहले चोर का हाथ काट दिया गया तो माल की इस्मत साकित हो गई। क्या माना माल की इस्मत साकित हो गई? माना यह है कि वह माल मुतकविम ही ना रहा, अब वो गैर मुतकविम है, उस माल की कोई कीमत ही नहीं है। तो जब दूसरे चोर ने माल चुराया तो यह माल गैर मुतकविम है, इसकी कोई कीमत ही नहीं है। और गैर मुतकविम माल के अंदर तो हाथ नहीं काटा जाता, माल तो कम से कम 10 दिरहम के अंदर काटा जाता है, और यह माल इसकी तो कोई कीमत ही नहीं, तो इसके अंदर चोर का हाथ काटा ही नहीं जा सकता, खुद मालिक की खुसूमत के जरिए भी नहीं काटा जा सकता और पहले चोर की खुसूमत के जरिए भी दूसरे चोर का हाथ नहीं काटा जा सकता। लेकिन अगर पहले चोर का अभी हाथ नहीं काटा गया था कि उससे पहले ही दूसरे चोर ने वो माल चोरी कर लिया, तो फिर इस सूरत में याद रखो ये पहला चोर भी खुसूमत करके दूसरे चोर का हाथ कटवा सकता है, क्योंकि अभी तक पहले चोर का हाथ नहीं कटा, जब हाथ नहीं कटा तो माल की इस्मत अभी तक साकित नहीं हुई, माल अभी भी माले महफूज है, अभी भी वो माले मुतकविम है भाई। और जब वो माले मुतकविम है और दूसरे चोर ने चोरी किया है तो उसका हाथ भी काटा जाएगा। और मैंने आपको यह भी बतलाया था कि जब तक चोर का हाथ ना काटा जाए उस वक्त तक चोर गासिब के दर्जे में है जी। उस वक्त तक चोर गासिब के दर्जे में है, तो जब तक पहले चोर का हाथ नहीं काटा गया तो पहला चोर गासिब के दर्जे में है। और आप पढ़ चुके हैं कि गासिब जो है वो जामिन होता है, उस पर जमान आता है और वो खुसूमत कर सकता है, तो जब पहला चोर अभी गासिब के दर्जे में है तो यह खुसूमत करके दूसरे चोर का हाथ कटवा सकता है। और फिर उसके बाद साहिब हिदाया ने मसला जिक्र फरमाया कि अगर एक चोर ने चोरी कर ली लेकिन खुसूमत से पहले ही उसने वो माल जो है मालिक को वापस कर दिया तो उस चोर का हाथ नहीं काटा जा सकता। जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, चाहे खुसूमत से पहले ही चोर हम माल वापस कर दे फिर भी उसका हाथ कटवाया जा सकता है खुसूमत करके। वो इसको कियास करते हैं कि जब मुराफा के बाद चोर जो है माल वापस कर दे तो वहां उसका हाथ काटा जाता है, तो यहां पर भी उस मुराफा से पहले उसने माल वापस किया है तो भी उसका हाथ काटा जाएगा। मैंने बताया था मुराफा का माना है मामले को काजी तक ले जाना, यानी काजी के पास मुकदमा कर देना। तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं जब एक दफा मुराफा कर दिया गया, काजी तक बात पहुंच गई, उसके बाद फिर चोर चाहे माल वापस भी कर दे फिर भी उसका हाथ काटा जाता है, तो यहां मुराफा से पहले भी जब उसने चोरी की है तो चाहे माल वो वापस भी कर दे फिर भी उसका हाथ कटवाया जा सकता है। जबकि हम कहते हैं नहीं, हम कहते हैं कि आप मुराफा से पहले की हालत को मुराफा के बाद की हालत पर कयास नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि दोनों में फर्क है भाई। इसलिए क्योंकि जब मुराफा से पहले चोर ने माल वापस कर दिया तो अब खुसूमत खत्म हो गई, और खुसूमत तो जरूरी थी चोरी के जुहूर के लिए। जब खुसूमत खत्म हो गई तो चोरी काजी के पास जाहिर ही नहीं हो सकती, जब जाहिर नहीं हो सकती तो चोर का हाथ भी नहीं काटा जा सकता। जबकि मुराफा के बाद अगर चोर माल वापस भी कर दे फिर भी जो खुसूमत है वो खत्म नहीं होती, क्योंकि खुसूमत यानी झगड़ा अपनी इंतहा को पहुंच चुका है, यानी बात काजी तक पहुंच गई है। किसी झगड़े की इंतहा क्या होती है कि बात काजी तक पहुंच जाए और काजी फिर उनमें फैसला करवा दे, तो खुसूमत अपनी आखिरी हद को पहुंच चुकी है, यानी बात काजी तक पहुंच चुकी है। और जब कोई चीज अपनी आखिरी हद को पहुंच जाए तो फिर उसके बाद वो बातिल नहीं हो सकती। जैसे मैंने उसकी मिसाल जिक्र की थी कि अगर खावन सोहबत से पहले बीवी को तलाक दे दे तो निस्व महर देना पड़ता है, और यह निस्व महर भी साकित होने का एहतमाल रखता है कि हो सकता है औरत मुर्तद हो जाए या औरत की तरफ से जुदाई आ जाए किसी वजह से, तो इस सूरत में निस्व महर भी साकित हो जाता है। लेकिन अगर सोहबत से पहले खावन या बीवी का इंतकाल हो गया तो फिर इस सूरत में अब यह महर पक्का हो गया। वजह यह कि अब निकाह अपनी आखिरी हद को पहुंच गया, अब निकाह के बातिल होने की कोई सूरत नहीं। यूं समझेंगे यह निकाह हुआ ही इतनी मुद्दत के लिए था, और जब इतनी मुद्दत के लिए निकाह हुआ था और वह मुद्दत पूरी हो चुकी है तो लिहाजा अब खावन के जिम्मे लाजिम है कि जो عوض اس نے طے کیا تھا وہ عوض یعنی مہر اس کو اب دینا پڑے گا ہر حال کے اندر. تو چیز جب اپنی انتہا کو پہنچ جائے پھر اس کو باطل نہیں کیا جا سکتا. تو یہاں پر بھی جب خصومت قاضی تک پہنچ گئی تو اب چاہے چور مال واپس بھی کر دے اب خصومت باطل نہیں ہو سکتی بلکہ تقدیراً باقی رہے گی. چور نے بے شک مال واپس کر دیا ہے, بظاہر جھگڑا ختم ہو گیا ہے, لیکن تقدیراً خصومت اب بھی باقی ہے کیونکہ خصومت اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے. لہذا اس صورت میں پھر چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی. اور صاحب ہدایہ نے پھر یہ مسئلہ بھی ذکر فرمایا کہ اگر مالک نے وہ مال مسروقہ جو ہے وہ چور کو ہبہ کر دیا اور اس کے حوالے کر دیا ہاتھ کٹنے سے پہلے ہی, تو اس صورت میں بھی قطع ساقط ہو جائے گی بھائی. یا مالک نے وہ مال چور کے ہاتھ فروخت کر دیا ہاتھ کٹنے سے پہلے, تو اس صورت میں بھی قطع ساقط ہو جائے گی بھائی. جبکہ امام زفر اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں قطع ساقط نہیں ہوگی. اور یہی ایک روایت ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے بھی, یہ فرماتے ہیں کہ جس وقت چوری کی تھی اس وقت چور مال کا مالک نہیں تھا اور اب بعد میں آ کر مالک بنا ہے. جب چوری کی تھی اس وقت بھی مالک نہیں تھا اور جب قاضی کے پاس گواہی پیش ہوئی اور چوری ظاہر ہوئی اس وقت بھی یہ مال کا مالک نہیں تھا, اسی لیے تو قاضی نے ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ کیا بھائی. اور اب اس کے بعد جا کر یہ چور اس مال کا مالک بن رہا ہے, تو اس کی وجہ سے کسی قسم کا شبہ نہیں آتا. اگر چوری کے وقت چور مال کا مالک ہوتا یا قاضی کے فیصلے کے وقت چور مال کا مالک ہوتا پھر تو شبہ آ جاتا کہ اس نے اپنا مال لیا ہے اور اپنے مال کی وجہ سے کسی کا ہاتھ نہیں کاٹا جا سکتا. لیکن یہاں تو جو چور مال کا مالک بن رہا ہے وہ سرقہ اور ظہور سرقہ کے بعد مالک بن رہا ہے, لہذا اس کی وجہ سے کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں آتا, لہذا اس چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا. جبکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ حدود کے مسئلے میں حد کو نافذ کرنا بھی قضاء کا حصہ ہے, لہذا جو شرطیں قضاء کے وقت ضروری ہیں وہی شرطیں قطع کے وقت بھی ضروری ہیں. اور جس طرح قضاء کے وقت ضروری ہے کہ چور اس مال کا مالک نہ ہو, اسی طرح قطع کے وقت بھی ضروری ہے کہ چور اس مال کا مالک نہ ہو بھائی. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ حدود کے مسئلے میں حد کو نافذ کرنا یہ قضاء کا حصہ اس لیے ہے, وجہ صاحب ہدایہ نے بتلائی تھی کہ وجہ یہ ہے کہ قاضی عام معاملات کے اندر جب قاضی فیصلہ کرتا ہے تو وہاں صرف وہ حق کا اظہار کر دیتا ہے. دو آدمیوں کے درمیان ایک مسئلے میں جھگڑا ہے, وہ قاضی کے پاس چلے گئے تو قاضی وہاں بتلا دے گا کہ یہ والا آدمی حق پر ہے. تو عام معاملات میں قاضی کا کام کیا ہے؟ اظہار حق ہے, کہ وہ حق کو ظاہر کر دے اور بتلا دے کہ ان دو جھگڑنے والوں میں سے کون سا آدمی حق پر ہے. لیکن حدود کے مسئلے میں یہ جو حد وصول کی جاتی ہے یہ تو حق شریعت ہے, یہ تو اللہ کا حق ہے اور اللہ تو ہر چیز کو جاننے والے ہیں. لہذا اگر یہ حد کے مسئلے میں قاضی صرف فیصلے پر اکتفا کر لے گا تو بھئی یہ فیصلہ تو کس لیے ہوتا ہے؟ حق کے اظہار کے لیے, اور حق تو اللہ کے نزدیک پہلے سے ہی ظاہر ہے, اللہ تو ہر چیز کو جاننے والے ہیں, تو پھر تو قضاء قاضی کا کوئی فائدہ ہی نہ ہوا بھئی. تو حدود کے مسئلے میں حد کو نافذ کرنا بھی قاضی کی ذمہ داری ہے, یہ بھی قضاء قاضی کا حصہ ہے بھئی. اور اس کے بعد صاحب ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا کہ اگر ہاتھ کٹنے سے پہلے اس مال مسروقہ کی قیمت نصاب سے کم ہو گئی یعنی 10 درہم سے کم ہو گئی تو پھر چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ کاٹنے سے پہلے چاہے اس مال کی قیمت نصاب سے کم ہی کیوں نہ ہو جائے پھر بھی چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا. اور یہی قول ہے امام زفر اور امام شافعی رحمہم اللہ کا بھی, اور وہ اس کو قیاس کرتے ہیں عین کے اندر کمی پر. وہ اس کو قیاس کرتے ہیں عین کے اندر کمی پر. مثلا دیکھو ایک چور نے 20 درہم چوری کیے, اب اگر ان 20 درہموں میں سے وہ 15 درہم خرچ کر دیتا ہے تو دیکھو اس مال کی عین میں اس کی ذات میں کمی آ گئی, निसाब से कम हो गया, लेकिन फिर भी बिल इतफाक इस चोर का हाथ काटा जाता है अगरचे ऐन में कमी आ गई है। तो जब उस माले मसरूका की ऐन और उसकी जात में कमी आ जाए उस वक्त चोर का हाथ काटा जाता है, तो उसकी कीमत में अगर कमी आ जाए फिर भी उस चोर का हाथ काटा जाएगा। जबकि हम जवाब देते हैं कि जिस तरह कजाए काजी के वक्त जो है निसाब का कामिल होना शर्त था, इसी तरह कता के वक्त भी निसाब का कामिल होना शर्त है, क्योंकि कता भी कजाए काजी का हिस्सा है भाई। और बाकी आपने कहा कि ऐन के अंदर कमी आ जाए तो फिर भी हाथ काटा जाता है, तो हम जवाब देते हैं कि भाई ऐन के अंदर जो कमी आती है वो चोर उसमें से जितना खर्च करता जाएगा या जितना माल उससे जाया होगा वो चोर पर दैन बनता चला जाएगा, क्योंकि जब तक हाथ नहीं कटा चोर गासिब के दर्जे में है, और गासिब के पास माल चाहे हलाक हो चाहे वो खुद हलाक करे उस पर जमान आया करता है, तो चोर गासिब के दर्जे में है। लिहाजा इसने 20 दिरहम चोरी किए, इन 20 दिरहमों में से जितने दिरहम जाया हो गए या जितने दिरहम इसने खर्च कर दिए तो उनका जमान चोर पर आएगा। तो मसलन इसने 20 में से 15 दिरहम खर्च कर दिए और 5 दिरहम इसके पास बाकी हैं, तो 5 दिरहम तो ऐन हैं और 15 दिरहम जो है वो चोर पर दैन है, तो 15 और 5 अभी भी देखो 20 दिरहम है, यानी निसाब पूरा है। तो लिहाजा ऐन के अंदर जो कमी आती है वो दैन बनता चला जाता है, तो वहां निसाब फिर भी पूरा रहता है, कुछ निसाब ऐन होता है और कुछ निसाब दैन होता है, तो लिहाजा उसके अंदर तो हाथ काटा जाएगा, लेकिन कीमत के अंदर जो कमी आती है उसका तो जमान किसी पर नहीं आता। एक आदमी ने किसी की कोई चीज गसब कर ली और उस वक्त उसकी कीमत मसलन 1 लाख रुपए थी, और फिर 10 दिन बाद उसने वो चीज वापस कर दी और इस दौरान उस चीज की कीमत कम होकर 50,000 हो चुकी है, तो देखो कीमत के अंदर नुकसान आ गया, लेकिन इसके बावजूद इस गासिब पर उसका कोई जमान नहीं आएगा क्योंकि इस कीमत के कम होने में उसका कोई दखल नहीं है। तो हम कहते हैं कि ऐन के अंदर जो कमी है उसमें जमान आता है और जो कीमत के अंदर कमी है उसमें जमान नहीं आता, तो दोनों अलग अलग चीजें हो गई, ऐन के अंदर कमी और चीज और कीमत के अंदर कमी और चीज, तो आप एक को दूसरी पर कयास नहीं कर सकते भाई। और फिर उसके बाद साहिब हिदायत ने मसला बयान फरमाया था कि अगर चोर चोरी से पहले कह दे कि ये माल जो मैंने चुराया था ये तो मेरा अपना ममलूका माल था, तो इस सूरत में भी हद साकित हो जाएगी। जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते नहीं, अगर इसकी वजह से हद साकित हो जाए ये तो हर चोर कह सकता है, तो फिर तो हद का दरवाजा ही बंद हो जाएगा। हम कहते हैं नहीं, इकरार की वजह से भी चोर का हाथ काटा जाता है, हालांकि इकरार के बाद रुजू मोतबर है और हर मुकिर रुजू कर सकता है, फिर भी उसका रुजू मोतबर है, तो यहां पर भी हर चोर यह कह सकता है फिर भी उसका यह कहना मोतबर है और इसकी वजह से शुबा आएगा और हद साकित हो जाएगी। और नीज इसलिए भी क्योंकि चोर को तो इन मसाइल का इलम नहीं होगा, तो हर चोर यह कैसे कह सकता है कि यह माल मेरा है, चोरों को तो इन मसाइल का इलम ही नहीं होगा भाई। उसके बाद साहिब हिदायत ने मसला जिक्र फरमाया कि दो आदमियों ने इकरार कर लिया कि हम दोनों ने मिलकर यह चोरी की थी, और फिर उनमें से एक ने कहा कि यह जो माल हमने चुराया यह तो मेरा माल था, तो गोया इसने चोरी से रुजू कर लिया, और चूंकि चोरी दोनों ने मिलकर की थी तो जब एक के ऊपर हद नहीं आ रही तो दूसरे पर भी हद नहीं आएगी शुबे की वजह से। और इसी तरह अगर दो चोर जो हैं उन्होंने चोरी की और फिर उनमें से एक गायब है और दूसरे पर गवाही पेश हो गई काजी के पास, तो इस एक चोर का भी हाथ काटा जाएगा। और साहिब हिदायत ने बतलाया यह इमाम साहिब का आखिरी कौल है। इमाम साहिब का पहला कौल यह था कि अगर एक चोर गायब है तो दूसरे चोर का हाथ नहीं काटा जा सकता, इसलिए क्योंकि हो सकता है अगर वो दूसरा चोर मौजूद होता तो वो ये कह देता कि ये माल जो हमने चोरी किया ये तो मेरा अपना माल था, तो उसकी वजह से शुबा आ जाता और शुबे की वजह से हद साकित हो जाती है। तो इमाम साहब का पहला कौल यह था कि जब एक चोर गायब हो तो दूसरे चोर का हाथ नहीं काटा जा सकता, लेकिन फिर बाद में इमाम साहब ने इस कौल से रुजू किया। और इमाम साहब का आखिरी कौल यह है और यही साहिबैन का भी कौल है कि अगर एक चोर गायब हो तो दूसरे चोर का हाथ काटा जाएगा। इसलिए क्योंकि गायब के खिलाफ तो चोरी साबित ही नहीं हुई, इसलिए क्योंकि काजी गायब के खिलाफ फैसला नहीं कर सकता। तो ये जो बयीना पेश हुई, इस बयीना की वजह से इस हाजिर के खिलाफ तो चोरी साबित हो गई लेकिन गायब के खिलाफ तो चोरी साबित ही नहीं हुई, यानी उसकी चोरी मादूम है, उसकी चोरी मादूम है, जैसे उसने चोरी की ही नहीं, और मादूम की वजह से तो कोई शुबा पैदा नहीं हो सकता, लिहाजा इस एक चोर का हाथ काटा जाएगा। बात समझ में आ गई। और फिर साहिब हिदाय ने जवाब भी दिया था इमाम साहिब के पहले कौल का। इमाम साहब का पहला कौल क्या था कि अगर एक चोर गायब हो तो दूसरे चोर का हाथ नहीं काटा जा सकता, क्योंकि हो सकता है वो दूसरा चोर अगर मौजूद होता तो वो कह देता ये माल जो हमने चोरी किया ये मेरा अपना माल था। तो उसका भी जवाब दिया कि अगर वो मौजूद होता और यूं कह देता तो फिर शुबा आता, लेकिन इस वक्त तो दूसरा चोर मौजूद ही नहीं, तो शुबा भी नहीं है, सिर्फ शुबे का एक एहतमाल है, शुबे का सिर्फ वहम होता है, और शुबे का एहतमाल या शुबे का वहम उसका तो कोई एतबार नहीं है। बात समझ में आ गई। अब आइए आज के सबक पर। व इदा अकर अल अब्दुल महजूर अलैहि बि सरिकति अशरति दराहिम बि ऐनिहा فَإِنَّهُ يُقْطَعُ وَتُرَدُّ السَّارِقَةُ إِلَى الْمَسْرُوقِ مِنْهُ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى। भाई ये जरा मुश्किल मसला है भाई, तवज्जो से इसको समझ लें। भाई आप जानते हैं कि ये जो आम गुलाम है इसको अब्द महजूर कहते हैं। महजूर यानी जिस पर पाबंदियां हैं, जिस पर पाबंदियां लगाई गई हैं। यह आम गुलाम तिजारत नहीं कर सकता क्योंकि यह माल का मालिक ही नहीं है, जो भी माल इसके पास है वो सारा इसके आका का है भाई। तो ये जो आम गुलाम है इसको अब्दे महजूर कहते हैं। और एक वो गुलाम होता है जिसे आका तिजारत की इजाजत दे दे, मसलन आका का एक गुलाम है और वो समझदार है, होशियार है, तो आका उसको तिजारत की इजाजत दे देता है कि जाओ जाकर तिजारत करो और पैसे कमाकर लाओ भाई। तो ये जो गुलाम जिसको आका ने तिजारत की इजाजत दे दी इसको अब्दे माजून कहते हैं भाई। अब सूरत मसला यह है कि अब्दे महजूर ने कुछ मुअय्यन माल के बारे में इकरार कर लिया कि यह माल मसलन मैंने जैद से चोरी किया था। गुलाम किसी और का है और वो कहता है कि ये जो 20 दिरहम पड़े हैं ये मैंने जैद से चोरी किए थे। तो इस सूरत में याद रखो इमाम आजम अबू हनीफा रहमला फरमाते हैं इस गुलाम का जिसने चोरी की है इसका हाथ काटा जाएगा, और ये जो माल है ये उस मसरूक मिनहू को वापस किया जाएगा, यानी जिससे गुलाम ने चोरी की थी, तो ये माल जैद को वापस कर दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इकरार करने वाला गुलाम जो है वो अब्द महजूर है, और जिस माल की चोरी का उसने इकरार किया है वो मुअय्यन माल है, मुअय्यन दराहिम मौजूद है, सामने पड़े हुए हैं। गुलाम कहता है ये वाले जो मुअय्यन 20 दिरहम हैं ये मैंने जैद से चोरी किए थे। तो इमाम साहब के नजदीक इस गुलाम का हाथ भी काटा जाएगा और ये जो माल है ये उस जैद को यानी मसरूक मिनहू को वापस किया जाएगा। जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इस गुलाम का हाथ तो काटा जाएगा, इसने चोरी की है, लेकिन ये दिरहम जो है ये जैद को नहीं दिए जाएंगे, ये दिरहम इस गुलाम के आका के ही हैं, क्योंकि गुलाम के पास जो कुछ होता है वो उसके आका का है भाई। तो ये मुअय्यन दराहिम भी किसके हैं? गुलाम के आका के हैं। जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इस गुलाम का हाथ नहीं काटा जाएगा और ये दिरहम जो है ये इसके आका के ही हैं भाई। और यही कौल है इमाम जुफर का भी। इमाम जुफर भी यही फरमाते हैं कि इस गुलाम का हाथ भी नहीं काटा जाएगा और ये दिरहम भी इसी के आका के हैं, ये उस मसरूक मिनहू यानी जैद को नहीं दिए जाएंगे। सूरत समझ में आ गई। फिर दोहरा लें, फिर दोहरा लें भाई। देखिए अब्दे महजूर ने इकरार किया है, ये दोनों कैदें याद रखना। ये इकरार करने वाला गुलाम कौन सा है? अब्दे महजूर। और जिस माल का इसने इकरार किया है वो मुअय्यन माल है, वो मुअय्यन माल है। अगर गुलाम माजून हुआ या वो माल गैर मुअय्यन हुआ, माल सामने मौजूद नहीं और गुलाम वैसे कहता है कि मैंने चोरी की थी इतने माल की, तो इस सूरत में फिर मसला बदल जाएगा। तो ये दोनों शर्तें हैं इसके अंदर, गुलाम कौन सा हो महजूर और माल किस किस्म का हो मुअय्यन हो। तो इमाम साहब फरमाते हैं जब आब्द महजूर किसी मुअय्यन माल का इकरार कर ले कि ये मैंने फुलां से चोरी किया था तो इस गुलाम का हाथ भी काटा जाएगा और वो माल भी मसरूक मिनहू को वापस किया जाएगा। जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह जो है वो एक हुक्म के अंदर तो इमाम साहब के साथ इत्तेफाक करते हैं कि इस गुलाम का हाथ काटा जाएगा, लेकिन दूसरे हुक्म में इख्तिलाफ करते हैं कि यह माल मसरूक मिनहू को नहीं देंगे, यह इसी गुलाम के आका का रहेगा। जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह दोनों हुक्मों में इख्तिलाफ करते हैं, वो फरमाते हैं चोर का हाथ भी नहीं काटा जाएगा और माल भी उस मसरूक मिनहू को नहीं देंगे बल्कि इसी गुलाम के आका का माल रहेगा। भाई तो कहते हैं वह इदा अकर अल अब्दुल महजूर अलैही, और जब इकरार कर लिया महजूर अलै गुलाम ने बिसरिकति अशरति दराहिम बिआइनिहा मुअय्यन 10 दिरहम की चोरी का फइन्नहु युक्तौ, तो इस गुलाम का हाथ काटा जाएगा वह तुरद्दु सरिकतु इलल मसरूक मिनहू, और वो माल मसरूका वापस किया जाएगा मसरूक मिनहू को। वहादा इंदा अबी हनीफा रहिमहुल्लाह, और यह इमाम आजम अबू हनीफा रहिम अल्लाह के नजदीक है। वकाल अबू यूसुफ रहमहुल्लाह, और इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह फरमाते हैं युक्ताउ के इस गुलाम का हाथ काटा जाएगा वल अशरतु लिल मौला, और वो 10 दिरहम जो है वो आका ही के हैं, वो उस मसरूक मिनहू को नहीं दिए जाएंगे। वकाल मुहम्मद रहमहुल्लाह, और इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह फरमाते हैं ला युक्ताउ, इस गुलाम का हाथ नहीं काटा जाएगा वल अशरतु लिल मौला, और ये 10 दिरहम भी इसी के आका के हैं। वह हुआ कौल जुफरा रहमहुल्लाह, और यही कौल है इमाम जुफर रहमहुल्लाह का भी। वह माना हाजा, यहां से साहिब हिदाया मतन की वजाहत फरमा रहे हैं। मतन में तो सिर्फ इतना आया कि आब्द महजूर ने मुअय्यन 10 दिरहमों का इकरार किया है, तो इमाम साहब फरमाते हैं इसका हाथ भी काटा जाएगा और वह माल भी मसरूक मिनहू को वापस किया जाएगा। और फिर इसी में इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह इख्तिलाफ करते हैं। तो साहिब हिदायत आपको बतलाएंगे कि यह सारा मसला उस सूरत में है जब आका गुलाम को झुटलाए। गुलाम ने तो कहा है ये 10 दिरहम मैंने जैद से चोरी किए थे, आका कहता है नहीं ये झूठ बोल रहा है, ये 10 दिरहम मेरे अपने हैं। तवज्जो है, तो उस वक्त फिर इन तीनों अइम्मा के दरमियान इख्तिलाफ है। और अगर आका झुटलाता नहीं है, आका कहता है ये गुलाम सच कह रहा है, फिर तो याद रखो बिल इत्तेफाक सबके नजदीक इस गुलाम का हाथ काटा जाएगा भाई, और ये माल भी उस आदमी को वापस दिया जाएगा जिससे चोर ने चोरी की थी, क्योंकि आका खुद इकरार कर रहा है कि ये गुलाम सच कह रहा है। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं वह माना हाजा, और इस कौल का माना यह है कि इजा का जबहुल मौला के जब आका जो है इस गुलाम को झुटला दे। वलाउ अकर रबिसरिकति मालिन जी, अब सूरत जिक्र करेंगे कि अगर वो माल मुअय्यन नहीं है, अब्दे महजूर ने चोरी का इकरार तो किया है लेकिन माल मुअय्यन नहीं, कहता है वो माल मैं खर्च कर चुका हूं या वो माल गैर मुअय्यन है, तो कहते हैं इस सूरत में बिल इत्तेफाक हमारे तीनों अइमा के नजदीक इस गुलाम का हाथ काटा जाएगा। तवज्जो है, और अगर वो अब्दे माजून हुआ, इकरार करने वाला अब्दे माजून हुआ, फिर चाहे वो मुअय्यन माल का इकरार करे चाहे गैर मुअय्यन यानी मुस्तहलक माल का इकरार करे, तो उसमें भी बिल इत्तेफाक सबके नजदीक हाथ काटा जाएगा जी। तो इख्तिलाफ सिर्फ किस गुलाम में है? अब्दे महजूर के बारे में। और किस सूरत में इख्तिलाफ है? जब वो माल मुअय्यन हो। तो कहते हैं वलौ अकर बिसरिकति मालिन मुस्तहलकिन, और अगर उस अब्दे महजूर ने इकरार किया ऐसे माल की चोरी का मुस्तहलकिन जिसको वो हलाक कर चुका है, जिसको वो हलाक कर चुका है यानी खर्च कर चुका है, यानी यूं को गैर मुअय्यन माल की चोरी का इकरार करता है। तो कहते हैं वलाउ अकर्र बिसरिकति मालिन मुस्तहलकिन, और अगर उस अब्दे महजूर ने इकरार किया माल मुस्तहलक की चोरी का कुतियत यदूहू, तो फिर इसका हाथ काटा जाएगा। और मैंने बताया इसमें हमारे तीनों अइमा का इत्तेफाक है भाई। वलाउ कान अल अब्दु माजूनन लहू, और अगर वो गुलाम जो है जो इकरार करने वाला है, और अगर वो गुलाम जो है माजूनन लहू वो माजून लहू हुआ युक्तउ फिल वजहैन, तो इसका हाथ दोनों सूरतों में काटा जाएगा। अगर वो गुलाम अब्दे माजून हुआ फिर इसका हाथ दोनों सूरतों में काटा जाएगा। कौन सी दो सूरतें? चाहे वो माल मुआयन हो चाहे गैर मुआयन हो यानी मुस्तहलक हो भाई। तो ये माना है वलौ कान अल अब्दु माजूनन लहू, और अगर वो इकरार करने वाला गुलाम माजून लहू है, युक्ता फिल वजहैनी, तो दोनों सूरतों में उसका हाथ काटा जाएगा। وقال زفر رحمه الله تعالى, और इमाम जुफर रहमतुल्लाह फरमाते हैं, لا يقطع في الوجوه كلها, कि इस गुलाम का हाथ नहीं काटा जाएगा इन तमाम सूरतों में। इमाम जुफर रहमतुल्लाह फरमाते हैं चारों सूरतों में से किसी एक सूरत के अंदर भी गुलाम का हाथ नहीं काटा जाएगा, चाहे अब्द महजूर हो चाहे अब्द माजून हो, और चाहे माले मुआयन हो चाहे माले गैर मुआयन हो, किसी सूरत के अंदर भी गुलाम का हाथ नहीं काटा जाएगा। तो कहते हैं वकाल जुफर रहमहुल्ला, और इमाम जुफर रहमहुल्ला फरमाते हैं, ला युक्ता फिल वुजूह कुल्लिहा, कि इन तमाम सूरतों के अंदर चोर का हाथ नहीं काटा जाएगा, यानी किसी भी सूरत में चोर का हाथ नहीं काटा जाएगा। लिअन्नल असल इंदहू, आगे जाबता जिक्र फरमा रहे हैं इमाम जुफर रहमहुल्ला का, जाबता यह है, वो फरमाते हैं कि गुलाम का हुदूद या किसास का इकरार सही ही नहीं है, उसका एतबार ही नहीं है जी। अगर गुलाम किसी हद का इकरार करे या किसास का इकरार करे तो ये इकरार सही ही नहीं है। जैसे यहां पर गुलाम ने चोरी का इकरार किया है और चोरी की वजह से हद आएगी, इसका हाथ काटा जाएगा, या गुलाम जो है किसास का इकरार करता है कि फुला आदमी को मैंने कत्ल किया था जानबूझकर भाई, तो इमाम जुफर फरमाते हैं कि हुदूद और किसास के मसले में गुलाम का इकरार सही ही नहीं है, मुअतबर ही नहीं है। वजह यह कि इस इकरार की वजह से या तो गुलाम की जान जाएगी, उसको भी किसास में कत्ल किया जाएगा, या इस इकरार की वजह से गुलाम का उज्व कटेगा यानी हाथ काटा जाएगा उसने चोरी की है, और चाहे गुलाम की जान जाए चाहे गुलाम का हाथ जाए, ये दोनों तो आका का माल हैं। गुलाम क्या है? आका का माल है, लिहाजा गुलाम की जात वो भी आका का माल, और गुलाम के आजा ये भी क्या है? आका का माल है। तो गोया जब गुलाम हुदूद और किसास का इकरार कर रहा है तो वो गोया आका के खिलाफ इकरार कर रहा है, और एक आदमी का इकरार अपनी जात के बारे में तो मुअतबर होता है, किसी दूसरे के खिलाफ तो उसका इकरार मुअतबर नहीं होता। तवज्जो है, इकरार अपने बारे में किया जाता है, दूसरों के खिलाफ इकरार मुअतबर नहीं। मसलन एक आदमी कहता है कि मैं इकरार करता हूं जैद ने अमर के 20 लाख रुपए देने हैं, भाई इस इकरार की वजह से इस इकरार करने वाले पर माल आ रहा है या जैद पर आ रहा है? जैद पर माल आ रहा है, तो वो ये तो जैद के खिलाफ इकरार कर रहा है, तो ये इकरार मुअतबर नहीं है भाई। जैद खुद इकरार करे फिर तो उस पर माल लाजिम हो सकता है, किसी और के इकरार की वजह से जैद पर माल लाजिम नहीं हो सकता। या ये गुलाम है एक आदमी और वो कहता है कि मैं अपने इस आका का गुलाम नहीं हूं, मैं तो जैद का गुलाम हूं, तो देखो गुलाम इकरार कर रहा है और इस इकरार की वजह से नुकसान किसका हो रहा है? आका का। लिहाजा ये इकरार मुअतबर नहीं है, ये तो आका के खिलाफ इकरार कर रहा है। बात समझ में आ गई? तो इमाम जुफर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि गुलाम हुदूद या किसास के अंदर इकरार करे तो वो मुअतबर नहीं, क्योंकि इसके अंदर आका का नुकसान है और किसी गैर के खिलाफ इकरार का एतबार नहीं किया जा सकता। तो कहते हैं लिअन्नल असल इंदहू, इसलिए क्योंकि जाबता जो है इमाम जुफर रहमतुल्लाह के नजदीक वो ये है कि अन्ना इकरार अल अब्द अला नफसी ही, कि गुलाम का अपनी जात पर इकरार करना बिल हुदूद वल किसास, हुदूद और किसास का, ला यसिहु, ये इकरार सही नहीं है। लिअन्नहू यरिदु अला नफसी ही व तरफी ही, इसलिए क्योंकि ये इकरार तो वारिद होगा उस गुलाम की जान पर, व तरफी ही, और उसके उज्व पर, वकुल्लु ज़ालिका मालुल मौला, और वो सारा तो इसके आका का माल है। वल इकरारु अलल गैरि गैरु मकबूलिन, और गैर के खिलाफ कोई इकरार किया जाए तो वो मकबूल नहीं होता, उसको कबूल नहीं किया जाता भाई। इल्ला अन्नल माज़ून लहू युआखदु बिज़्ज़मानि वल माली लिसिहति इकरारिही बिही। हां, अलबत्ता इमाम जुफर फरमाते हैं कि अब्द माज़ून जो है अगर वो माल का इकरार करेगा वो मुअतबर है, अब्द माजून माल का इकरार करे तो वह इकरार मोतबर है। अब्द माजून किसास या हुदूद का इकरार करे तो वो तो मोतबर नहीं, वो तो मोतबर नहीं, लेकिन माल के सिलसिले में उसका इकरार मोतबर है। तो उसकी अब वजह जिक्र करने लगे हैं कि उसके अंदर भी तो माल गोया आका के जिम्मे ही आ रहा है। अब्द माजून लहू भी जब माल का इकरार करेगा कि मैंने फुलां का इतना माल देना है, तो वो माल भी तो गोया आका के ऊपर ही आ रहा है। तो उसका जवाब दे रहे हैं कि अब्द माजून लहू का इकरार माल के सिलसिले में इसलिए मोतबर है कि खुद आका ने ही उसको इसकी इजाजत दी है, क्योंकि आका ने जब उसको तिजारत की इजाजत दे दी तो गोया उसको इकरार का भी इख्तियार दे दिया, क्योंकि तिजारत में हमेशा फायदा तो नहीं होता, कभी नुकसान भी होता है। तो लिहाजा अगर नुकसान होता है और इसके ऊपर लोगों का कर्ज आता है तो वो इसको अदा करना पड़ेगा भाई, लिहाजा इसका इकरार मोतबर है। तो कहते हैं इल्ला अन्नल माजून लहू युआखदु बिज़्ज़मानी वल माली, मगर ये कि माजून लहू गुलाम जो है युआखदु उसका मुआखजा होगा बिज़्ज़मानी वल माली जमान और माल के साथ, यानी अब्द माजून का मुआखजा किया जा सकता है जमान और माल के साथ। जमान के साथ तब मुआखजा होगा जब माल ये खर्च कर चुका है या माल गैर मुआयन है, और माल के साथ मुआखजा होगा उस सूरत में जब माल मौजूद है। तवज्जो है, तो जब माल मौजूद है, अब्द माजून ने कहा यह वाला माल मैंने जैद से चोरी किया था, तो अब इस माल के सिलसिले में अब्द माजून का मुआखजा हो सकता है और यह माल फिर उस माल के मालिक को लौटाया जाएगा। या वह अब्द माजून अगर गैर मुआयन माल का इकरार करता है तो फिर इस सूरत के अंदर उस पर जमान आएगा, वह उसको अदा करना पड़ेगा। तो यह माना है इल्ला अन्नल माजून लहू युआखदु बिज़्ज़मानी वल माली, मगर यह कि अब्द माजून लहू जो है उसका मुआखजा किया जा सकता है बिज़्ज़मानी वल माली जमान और माल के साथ। जमान के साथ मुआखजा कब होगा? जब माल गैर मुअय्यन है या वो खर्च कर चुका है। वल माली और माल के साथ उसका मुआखजा कब होगा? जब वो माल मुअय्यन है, सामने मौजूद है। तो यह माना है कि इल्ला अन्नल माजून लहू युआखदु बिज़्ज़मानी वल माली, मगर यह कि अब्द माजून जो है उसका मुआखजा जमान और माल के साथ किया जा सकता है लिसहति इकरारी ही बिही, इस वजह से कि इसका माल का इकरार करना सही है, माल का इकरार करना सही है लिकौनी ही मुसल्लतन अलैही, इसलिए क्योंकि यह अब्द माजून लहू जो है यह मुसल्लत है अलैही उस इकरार पर मीन जिहती ही आका की जानिब से, इस इकरार की इजाजत उसको आका ने दी है, आका ने जब इसको तिजारत की इजाजत दे दी तो गोया इकरार की भी इजाजत दे दी। यह माना है लिकौनी ही मुसल्लतन अलैही मिन जिहती ही, इस वजह से कि अब्द माजून जो है वो इकरार पर मुसल्लत किया गया है मिन जिहती ही आका की जानिब से। वल महजूर अलैही ला यसहु इकरारहु बिल माली अयज़न, और महजूर अलै गुलाम जो है उसका इकरार बिल माल भी सही नहीं होता। पीछे तो हमने बता दिया था कि गुलाम जो है हुदूद और किसास के मसले में उसका इकरार मोतबर ही नहीं, अलबत्ता माल के सिलसिले में माजून लहू का इकरार मोतबर है, जबकि महजूर लहू का इकरार तो माल के सिलसिले में भी मोतबर नहीं है। बात समझ में आ गई, बात चल रही है इमाम जुफर रहमतुल्लाह की। तो इमाम जुफर रहमतुल्लाह के नजदीक चारों सूरतों के अंदर कता नहीं होगा, गुलाम का हाथ नहीं काटा जाएगा, क्योंकि हुदूद और किसास के सिलसिले में गुलाम का इकरार मोतबर नहीं है। अलबत्ता अब्द महजूर जो है, अब्द महजूर उस पर जमान नहीं आएगा, क्योंकि अगर उस पर आप जमान लाजिम करते हैं, चाहे माल मुअय्यन है चाहे गैर मुअय्यन है, दोनों सूरतों में वो आका पर आ जाएगा और गैर के खिलाफ तो इकरार मोतबर नहीं होता। जबकि अब्द माजून जो है उसको तो आका ने उस इजाजत दी है इकरार करने की, लिहाजा वो अगर चोरी का इकरार करता है तो उसका हाथ तो नहीं काटा जाएगा, लेकिन उस पर जमान आ जाएगा अगर वो माल खर्च कर चुका है, या अगर वो मुअय्यन माल मौजूद है तो वही माल वापस देना पड़ेगा। तो यह माना है वल महजूर अलैहि ला यसहु इकरारहु बिल माली अयज़न, और महजूर अलै गुलाम जो है उसका इकरार बिल माल भी सही नहीं है। وَنَحْنُ نَقُولُ اور ہم کہتے ہیں. یہاں سے صاحب ہدایہ امام زفر حملہ کو جواب دے رہے ہیں ہمارے ائمہ کی طرف سے بھئی, وَنَحْنُ نَقُولُ اور ہم کہتے ہیں, يَصِحُ اِقْرَارُهُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ آدمِيٌّ کہ اس غلام کا اقرار بھی صحیح ہے, اس غلام کا چاہے عبد محجور ہو چاہے عبد مازون ہو اس کا اقرار بھی صحیح ہے حدود اور قصاص میں. آپ نے تو کہا کہ غلام کا اقرار حدود اور قصاص کے مسئلے میں سرے سے صحیح ہی نہیں ہے, لیکن ہم کہتے نہیں غلام کا اقرار بھی حدود اور قصاص کے مسئلے میں صحیح ہے. وجہ یہ کہ اس کا یہ اقرار آدمی ہونے کی حیثیت سے ہے, وہ ایک جرم کا اقرار کر رہا ہے اور وہ غلام مکلف ہے, شرعی احکام کا مخاطب ہے. مکلف کا کیا معنی؟ ذمہ دار بھائی, یعنی وہ شرعی احکام کا ذمہ دار ہے, شریعت نے اسے مکلف بنایا ہے, یعنی نماز روزہ وغیرہ جیسے عام آزاد آدمی پر فرض ہیں اسی طرح غلام پر بھی فرض ہیں, اسی طرح جن چیزوں سے شریعت نے آزاد آدمی کو روکا ہے انہی چیزوں سے غلام کو بھی روکا ہے. معلوم ہوا غلام جو ہے شرعی احکام کا مکلف ہے کیونکہ وہ بھی آدمی ہے, اس کی طرف بھی شرعی احکام متوجہ ہیں, تو لہذا یہاں پر وہ ایک جرم کا اقرار کر رہا ہے تو یہ اقرار معتبر ہے. حدود یا قصاص کے اندر وہ ایک جرم کا اقرار کر رہا ہے تو آدمی ہونے کی حیثیت سے اس کا یہ اقرار معتبر ہے بھائی. تو کہتے ہیں وَنَحْنُ نَقُولُ اور ہم کہتے ہیں, يَصِحُ اِقْرَارُهُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ آدمِيٌّ کہ اس غلام کا اقرار بھی صحیح ہے اس حیثیت سے کہ یہ آدمی ہے. ثُمَّ يَتَعَدَّى إِلَى الْمَالِيَّةِ پھر یہ اقرار متعدی ہو جائے گا مال ہونے کی طرف. بھئی اس نے جو اقرار کیا ہے وہ آدمی ہونے کی حیثیت سے کیا ہے, لیکن آدمی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ غلام مال بھی ہے جی, تو اب یہ اقرار مال ہونے کی طرف بھی متعدی ہو گیا جی, یعنی مال ہونے کے اعتبار سے بھی یہ اقرار صحیح ہے چاہے آقا کا نقصان ہی کیوں نہ ہو رہا ہو بھئی جی. تو یہ مانا ہے ثم يتعدى الى المالیتی پھر غلام کا یہ اقرار جو ہے متعدی ہو جائے گا الى المالیتی مال ہونے کی طرف بھی. فیصح من حیث انه مال تو اس کا یہ اقرار مال ہونے کی حیثیت سے بھی صحیح ہے. ولانه لا تهمت فی هذا الاقرار اور نیز اس لیے کیونکہ اس اقرار کے اندر کوئی بدگمانی نہیں ہے. امام زفر رحمہ اللہ فرماتے تھے حدود اور قصاص کے اندر غلام کا اقرار معتبر ہی نہیں ہے کیونکہ اس میں آقا کا نقصان ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس اقرار کے اندر کسی قسم کی بدگمانی دلوں میں نہیں آتی کیونکہ اس اقرار کی وجہ سے غلام کا ہاتھ کاٹا جائے گا یا اس اقرار کی وجہ سے غلام کو قتل کیا جائے گا, تو غلام کا جو نقصان ہے وہ آقا سے بھی بڑھ کر ہے. آقا کا تو صرف مال جائے گا, غلام کا تو ہاتھ ضائع ہو جائے گا یا اس کی جان ہی چلی جائے گی. تو معلوم ہوا غلام کا جو نقصان ہے وہ آقا سے بھی بڑھ کر ہے, اور اس قسم کا مقام جہاں پر اقرار کرنے والے کا اپنا نقصان زیادہ ہو وہاں کسی قسم کی بدگمانی دلوں میں نہیں آتی کہ یہ آقا کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. امام زفر رحم اللہ تو فرماتے تھے کہ یہ حدود اور قصاص کا اقرار کرے گا تو گویا معلوم ہوا یہ آقا کو نقصان دینا چاہتا ہے, دلوں میں بدگمانی آتی ہے لہذا اس کا اقرار معتبر ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نہیں, یہاں غلام کو جو نقصان ہو رہا ہے وہ آقا سے بھی بڑھ کر ہے. آقا کے تو صرف مال چلا جائے گا لیکن غلام کی جان ہی چلی جائے گی یا اس کا ہاتھ ہی چلا جائے گا, تو غلام کا نقصان آقا سے بڑھ کر ہے لہذا یہاں اس قسم کے مقام میں جہاں اقرار کرنے والے کا اپنا نقصان دوسرے آدمی کے مقابلے میں زیادہ ہو وہاں کسی قسم کی بدگمانی دلوں میں نہیں آتی, تو جب غلام کی اپنی ذات کے بارے میں یہ اقرار صحیح ہے تو طبعاً آقا کے حق میں بھی یہ اقرار صحیح ہو جائے گا, یعنی چاہے آقا کا مال جا رہا ہے لیکن پھر بھی یہ اقرار معتبر ہے بھائی. تو کہتے ہیں وَلِأَنَّهُ لَا تُهْمَتَ فِي هَذَا الْإِقْرَارِ اور اس لیے کیونکہ اس اقرار کے اندر کسی قسم کی بدگمانی نہیں ہے. لِمَا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِضْرَارِ اس وجہ سے کہ یہ نقصان دینے پر مشتمل ہے, कि गुलाम क्या कर रहा है, अपनी ही जात को नुकसान दे रहा है। लिमा यश्तमिलु अलैहि मिनल इज़्ज़रारी, इसलिए क्योंकि यह अपने आप को नुकसान देने पर मुश्तमिल है। व मिस्लुहु मकबूलुन अलल गैरी, और इस किस्म का इकरार गैर के खिलाफ भी मकबूल होता है, यानी उसको कबूल किया जाता है। जब इकरार करने वाले का अपना नुकसान ज्यादा है तो यह इकरार गैर के हक में भी मकबूल है, इसको कबूल किया जाएगा। बात समझ में आ गई। आगे देखिए, ले मुहम्मदिन रहिमहुल्लाह ताला फिल महजूरी अलैह। अब हमारे अइमा की तरफ से दलीलें जिक्र करेंगे साहिब हिदाया। एक मरतबा फिर मजाहिब दोहरा लें। इमाम जुफर रहिमहुल्लाह के नजदीक किसी भी सूरत में उस गुलाम का हाथ नहीं काटा जाएगा, चाहे अब्दे महजूर हो और चाहे अब्दे माजून हो। भाई अलबत्ता अब्दे माजून है तो उस पर माल का जमान आएगा, लेकिन अब्दे महजूर है तो उस पर माल का जमान भी नहीं, चाहे माल मुआयन हो चाहे गैर मुआयन हो, वो मसरूक मिनहू को वापस नहीं किया जाएगा। जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह का मजहब यह है कि इन चार सूरतों में से तीन सूरतों के अंदर गुलाम का हाथ काटा जाएगा, तीन सूरतों में हाथ काटा जाएगा और एक सूरत में गुलाम का हाथ नहीं काटा जाएगा। और वो कौन सी सूरत है? जब गुलाम महजूर हो और माल मुअय्यन हो, तो फिर गुलाम का हाथ भी नहीं काटा जाएगा और वो माल भी मसरूक मिनहू को वापस नहीं किया जाएगा। जबकि बाकी तीनों सूरतों के अंदर गुलाम का हाथ काटा जाएगा और अब्दे माजून के सिलसिले में उस पर माल का जमान भी आएगा। भाई जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि चारों सूरतों में गुलाम का हाथ काटा जाएगा, चारों सूरतों में गुलाम का हाथ काटा जाएगा, अलबत्ता जमान सिर्फ माजून लहू की सूरत में आएगा, अब्दे महजूर की सूरत में जमान नहीं आएगा, चाहे माल मुअय्यन हो चाहे गैर मुअय्यन हो। भाई जबकि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि चारों सूरतों में गुलाम का हाथ काटा जाएगा, और जब माल मुअय्यन हो, जब माल मुअय्यन हो तो फिर उस सूरत के अंदर वो माल मसरूक मिनहू को वापस किया जाएगा, और अगर वो माल गैर मुअय्यन है और अब्दे महजूर है फिर जमान नहीं आएगा, अलबत्ता अगर अब्दे माजून है फिर दोनों सूरतों में जमान भी आएगा। तफसील समझ में आ गई। याद रखिए हमारे अइमा का यहां पर जो आपस में इख्तिलाफ है उसकी वजह यह है कि हमारे अइमा एक जाब्ते के अंदर आपस में इख्तिलाफ करते हैं, और वो जाब्ता यह है कि चोरी के मसले में माल असल है या कता असल है, इसमें हमारे अइमा का इख्तिलाफ है। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि चोरी के मसले में माल असल है और हाथ का काटना उसके ताबे है, जबकि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह इसके बरअक्स फरमाते हैं। वो फरमाते हैं कि यहां कता यानी हाथ का काटना असल है और माल उसके ताबे है, जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि दोनों असल हैं, हाथ का काटना भी असल और माल भी असल है। बात समझ में आ गई। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक क्या जाब्ता है? माल असल है और हाथ का काटना ताबे है, जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक दोनों असल हैं, जबकि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नजदीक हाथ का काटना असल है और माल उसके ताबे है। भाई अब देखिए भाई किताब पर, लि मुहम्मदिन रहिमहुल्लाह तआला फिल महजूर अलैही। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह की दलील महजूर अलै गुलाम के अंदर वो ये है कि अन इकरारहु बिल माल बातिलुन, कि महजूर अलै गुलाम का माल का इकरार जो है वो बातिल है। महजूर अलै गुलाम माल का इकरार करे तो वो बातिल है, क्योंकि उसके पास जो कुछ है वो आका का है, तो गोया वो आका के खिलाफ इकरार कर रहा है। तो कहते हैं इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं अब्द महजूर के बारे में कि अन इकरारहु बिल माल बातिलुन, कि महजूर अलै का इकरार माल के सिलसिले में बातिल है। वलिहादा ला यसिहु मिनहुल इकरार बिल गस्बी, और इसी वजह से महजूर अलै का इकरार बिल गसब सही नहीं है। अगर अब्द महजूर इकरार कर लेता है कि मैंने कोई चीज फला आदमी से छीनी थी, तो याद रखो इस अब्द महजूर के इस इकरार का कोई एतबार नहीं, क्योंकि यह इकरार दरअसल किसके खिलाफ है? आका के खिलाफ है। भाई बात समझ में आ रही है, फिर जरा तर्जमा देख लीजिए। कहते हैं लि मोहम्मदिन रहमहुल्लाह तआला फिल महजूर अलैहि, ये महजूर अलै गुलाम के अंदर इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह की दलील ये है कि अन इकरारहु बिल माल बातिलुन, कि माल के लिए उसका इकरार बातिल है। वलिहादा ला यसिहु मिनहु अल इकरार बिल गसब, और इसी वजह से महजूर अलै गुलाम का गसब का इकरार जो है वो सही नहीं है। फयबका मालुल मौला, तो आका का माल बाकी रहेगा। सूरत क्या चल रही है, आबद महजूर ने इकरार किया है कि मैंने चोरी की और माल मुअय्यन है, सामने मौजूद है। आबद महजूर कहते हैं ये वाले जो दिरहम हैं ये मैंने फला आदमी से चोरी किए थे। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं आबद महजूर का इकरार माल के सिलसिले में दुरुस्त नहीं है। जब इकरार दुरुस्त नहीं तो यह माल आका ही का है, ये जो मुअय्यन दिरहम पड़े हैं ये आका ही के हैं। फयबका मालुल मौला, तो आका का माल बाकी रहा। वला कता अलल अब्दी फी सरिकति मालिल मौला, और गुलाम पर कता नहीं होती आका का माल चोरी करने में। भाई अब्द महजूर ने इकरार किया कि मैंने चोरी की है और ये वाले दिरहम मैंने चोरी किए थे जैद से, तो अब्द महजूर का ये इकरार मुआतबर नहीं। जब इकरार मुआतबर नहीं तो ये दस दिरहम किसके हुए, आका के हुए, और इन दस दिरहमों के ही चोरी करने का गुलाम इकरार कर रहा है। गोया गुलाम अपने ही आका के माल को चोरी करने का इकरार कर रहा है। और आप पढ़ चुके हैं कि गुलाम अपने आका का माल चोरी करे तो उसका हाथ नहीं काटा जा सकता। पीछे मसला जिक्र हुआ था कि वालिदैन अपने औलाद से चोरी कर लें या औलाद अपनी वालिदैन से चोरी कर लें, या मियां बीवी में से कोई एक दूसरे से चोरी कर ले, या गुलाम अपने आका से चोरी कर ले, तो इनमें से किसी का भी हाथ नहीं काटा जाएगा क्योंकि यहां हिर्ज नहीं है, सब बेतकल्लुफी से एक दूसरे के पास आते जाते हैं। तो कहते हैं मालूम हुआ कि ये जो गुलाम ने इकरार किया है ये अपने ही आका के माल के चोरी करने का इकरार कर रहा है, और अपने ही आका के माल की चोरी के अंदर तो गुलाम का हाथ नहीं काटा जा सकता। तो यह माना है वला कता अलल अब्दी फी सरिकति मालिल मौला, और गुलाम पर कता नहीं है अपने आका के माल की चोरी के अंदर। युअय्यिदुहु अन्नल माल असलुन फीहा, युअय्यिदुहु, और इसकी ताईद होती है इस बात से भी कि माल जो है चोरी में असल है। ये जो पीछे बात जिक्र हुई जो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने जिक्र फरमाया कि यहां पर इस गुलाम का हाथ नहीं काटा जाएगा, कहते हैं इसकी ताईद इस बात से भी होती है कि चोरी के अंदर माल असल है और कता उसके ताबे है। तो कहते हैं युअय्यिदुहु, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने जो जिक्र किया उसकी ताईद होती है इस बात से भी कि अन्नल माल असलुन फीहा, कि चोरी के अंदर माल असल है। वल कत्अ ताबिउन, और हाथ का काटना जो है वो ताबे है। हत्ता तुस्मउल खुसूमतु फीही बिदूनिल कत्अ, हत्ता तुस्मउ, याद रखना यहां पर भी हत्ता नसब नहीं देगा, इसलिए क्योंकि हत्ता के नसब के देने के लिए दो शर्तें हैं कि हत्ता का मा बाद मा कबल की तरफ निस्बत करते हुए मुस्तकबिल हो, और नीज वो हत्ता सबबियत या गाया का फायदा दे रहा हो। भाई तो यहां ये शर्तें पूरी नहीं, लिहाजा हत्ता के बाद अन मुकद्दर नहीं होगा। तो कहते हैं वलकता ताबिउन, और खता जो है वो ताबिअ है। हत्ता तुस्मउल खुसूमतु फीही बिदूनिल कत्अ, यहां तक के माल के सिलसिले में खुसूमत को सुना जाता है बिदूनिल कत्अ, बगैर कता के। भाई एक आदमी काजी के पास चला गया, काजी साहब ये जो आदमी है इसने मेरा माल चोरी किया है, लेकिन मैं सिर्फ माल की खुसूमत करना चाहता हूं, मैं चोरी की खुसूमत नहीं करना चाहता, मैं इसका हाथ नहीं कटवाना चाहता। तो कहते हैं फिर भी काजी इस खुसूमत को सुनेगा, काजी इस खुसूमत को सुनेगा, अगरचे वो माल के लिए खुसूमत कर रहा है, कता के लिए खुसूमत नहीं कर रहा। तवज्जो है, तो लिहाजा काजी इस खुसूमत को सुनेगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि फिर उस चोर का हाथ नहीं काटा जाएगा। भाई भाई चोर का तो हाथ काटा जाएगा, वो तो अल्लाह का हक है, वो इस आदमी का हक तो नहीं है कि यह कहे कि मैं हाथ नहीं कटवाना चाहता। तवज्जो है, हाथ जो चोर का काटा जाता है वो अल्लाह का हक है और उसको कोई माफ नहीं कर सकता भाई। तो लिहाजा जब आदमी काजी के पास चला गया कि मैं सिर्फ माल के लिए खुसूमत करना चाहता हूं, कता के लिए खुसूमत नहीं करना चाहता, तो काजी फिर भी इस खुसूमत को सुनेगा। अलबत्ता ऐसा नहीं है कि कता साबित ना हो, कता फिर भी साबित हो जाएगी। तो यह खुसूमत सिर्फ किसके लिए थी? माल के लिए, कता के लिए नहीं थी, फिर भी सुनी गई और फिर भी हाथ काटा गया। लेकिन इसका बरअक्स नहीं है। एक आदमी काजी के पास चला गया, काजी साहब इस आदमी ने मेरा माल चोरी किया है लेकिन मैं माल की खुसूमत नहीं करना चाहता, मैं माल वापस नहीं चाहता, मैं चाहता हूं इसका हाथ काटा जाए जी। तो अब यह खुसूमत किस लिए कर रहा है? कता के लिए, माल के लिए नहीं। तो याद रखो काजी इस खुसूमत को नहीं सुनेगा जी। और इस खुसूमत की वजह से माल भी साबित नहीं होगा क्योंकि वह माल के लिए खुसूमत कर ही नहीं रहा। बात समझ में आ गए? तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं चोरी के अंदर माल असल है और कता ताबे है, इसीलिए सिर्फ माल के लिए खुसूमत की जाए तो वो सुन ली जाती है और सिर्फ कता के लिए खुसूमत की जाए तो वो नहीं सुनी जाती। तो कहते हैं हत्ता तुस्माउल खुसूमतु फीही बिदूनिल कतई, यहां तक कि माल के सिलसिले में खुसूमत को सुना जाता है बिदूनिल कतई, बगैर कता के, कता के बगैर माल के लिए खुसूमत हो इस खुसूमत को सुना जा सकता है। वयस्बुतुल मालु दूनहु, और माल साबित हो सकता है दूनहु दूनल कतई, कता के बगैर। एक आदमी से दूसरे आदमी ने माल चोरी कर लिया है तो यहां ऐसा हो सकता है कि माल साबित हो जाए और कता साबित ना हो जी। किस तरह? देखो यह आदमी गवाही के तौर पर एक मर्द और दो औरतों को ले गया, ये आदमी एक मर्द और दो औरतों को गवाही के अंदर ले गया कि काजी साहब इस आदमी ने मेरा माल चोरी किया है। तो याद रखो इस सूरत में माल तो साबित हो जाएगा क्योंकि गवाह मौजूद हैं, एक आदमी है और दो औरतें, लेकिन कता नहीं साबित होगी। इसलिए क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि हुदूद का मसला बड़ा नाजुक है, अदना शुबे से भी हद साकित हो जाती है। तो लिहाजा हुदूद के मसले में सिर्फ मर्दों की गवाही काबिले कबूल है, औरतों की गवाही काबिले कबूल नहीं। माल वगैरह के सिलसिले में तो औरतों की गवाही कबूल की जा सकती है लेकिन हुदूद के मसले में कबूल नहीं की जा सकती। लिहाजा ये आदमी जब एक मर्द और दो औरतों को ले गया तो उसकी वजह से माल तो साबित हो जाएगा लेकिन कता साबित नहीं होगा। मालूम हुआ माल बगैर कता के साबित हो सकता है। या दूसरी सूरत ले लें, एक चोर ने खुद इकरार कर लिया कि मैंने फला आदमी का 1,00,000 रुपया चोरी किया था और बाद में फिर चोर ने रुजू कर लिया, पहले इकरार किया था और बाद में रुजू कर लिया, तो याद रखो इस रुजू की वजह से हद तो साकित हो जाएगी क्योंकि शुबा आ गया कि हो सकता है ये सच बोल रहा हो, तो हद तो साकित हो जाएगी लेकिन माल साकित नहीं होगा, माल देना पड़ेगा। मालूम हुआ माल बगैर कता के साबित हो सकता है। मालूम हुआ माल असल है और कता उसके ताबेअ है भाई। तो यह माना है वयसबुतुल मालु दूनहु, और माल साबित हो सकता है बगैर कता के। वफी अक्स ही ला तुस्मऊ वला यसबुतु, और इसके बरअक्स सूरत में पीछे आया था हत्ता तुस्मऊल खुसूमतु फीही बिदूनिल कतई, खुसूमत को सुना जाएगा माल के सिलसिले में बिदूनिल कतई, बगैर कता के। लेकिन आप कह रहे हैं वफी अक्स ही, इसके बरअक्स सूरत में ला तुस्मऊ, खुसूमत को नहीं सुना जाएगा। यानी जब कहने वाला क्या कहे, मैं माल नहीं चाहता मैं सिर्फ कता चाहता हूं, तो फिर खुसूमत को नहीं सुना जा सकता। वला यसबुतु, और इस सूरत में माल भी साबित नहीं होगा। तो मालूम हुआ माल के बगैर कता तो साबित नहीं हो सकती लेकिन कता के बगैर माल साबित हो सकता है। मालूम हुआ माल असल है भाई। आगे देखिए कहते हैं वह ईदा बतला फी माहुअल असलु बतला फी तबाई। भाई इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह की दलील चल रही है। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने बतलाया कि चोरी के मसले में माल असल है और कता जो है वो उसके ताबेअ है, लिहाजा माल के अंदर तो गुलाम का इकरार मोतबर नहीं। हमने आपको पीछे बतला दिया माल के अंदर गुलाम का इकरार मोतबर नहीं, वो माल किसका रहेगा? आका ही का रहेगा। तो जब माल के अंदर गुलाम का इकरार सही नहीं है हालांकि माल असल है तो फिर कता जो ताबिया है उसके अंदर बतरीके औला उसका इकरार सही नहीं होगा। यह माना है वह ईदा बतला फी माहुअल असलू, और जब उस गुलाम का इकरार बातिल हो गया उस चीज के अंदर जो असल है यानी माल, तो बतला फी तबाई, तो वह जो ताबिया है उसके अंदर भी उसका इकरार बातिल हो जाएगा, यानी इसकी वजह से उस गुलाम का हाथ नहीं काटा जा सकता। बिखिलाफ इल माजूनी, बखिलाफ अब्दे माजून के, लिअन इकरारहु बिल माल लदी फी यदिही सहीहुन, लिअन इकरारहु बिल माली, इसलिए क्योंकि इस अब्दे माजून का इकरार कर लेना उस माल का, अल्लदी फी यदिही जो उसके कब्जे में है, सहीहुन वो सहीह है। भाई अब्दे माजून ने कहा ये जो सामने 10 दिरहम पड़े हैं ये मैंने फलां से चोरी किए थे, तो अब्दे माजून के कब्जे में जो माल है उसके बारे में उसका इकरार सही है। जब मुअय्यन माल के अंदर अब्दे माजून का इकरार सही है तो गैर मुअय्यन के अंदर तो बतरीके औला उसका इकरार सही होगा भाई, क्योंकि उसको ये इख्तियार किसने दिया है, आका ने दिया है भाई। तो कहते हैं बिखिलाफ इल माजूनी, बखिलाफ अब्द माजून के, लिअन इकरारहु बिल माल लदी फी यदिही सहीहुन, इसलिए क्योंकि अब्द माजून का इकरार करना उस माल के बारे में जो उस अब्द माजून के कब्जे में है सहीहुन, उसका ये इकरार सहीह है। फयसिहु फी हक़िल क़त्अ तबअन, तो लिहाजा क़त्अ के हक में भी इसका इकरार सही होगा, तबअन ताबे होने के एतबार से। भाई इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक चोरी के अंदर असल माल है और कता उसके ताबे है, तो जब अब्द माजून का इकरार माल के सिलसिले में सही है तो कता के सिलसिले में भी सही होगा, क्योंकि वो कता तो उसके ताबे है। भाई ये माना है कि जब माल के बारे में उसका इकरार सही है, फयसिहु फी हक़िल क़त्अ तबअन, तो लिहाजा कता के हक में भी उसका इकरार सही होगा, तबअन बेतबार ताबे होने के। बात समझ में आ गई। आगे देखिए वली अबी यूसुफ रहिमहुल्लाह, और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह की दलील यह है, अन्नहु अकर्र बिशैअैनी, भाई इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह का ज़ाब्ता यह है कि चोरी के अंदर माल और कता दोनों असल हैं, चोरी के अंदर माल और कता दोनों असल हैं, दोनों में से कोई एक भी दूसरे के ताबिया नहीं है। तो वो फरमाते हैं वली अबी यूसुफ रहमतुल्लाह, और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह की दलील ये है कि अन्नहु अकर्र बिशैअैनी, कि इस गुलाम ने दो चीजों का इकरार किया है, दो चीजों का इकरार, एक कता का और एक माल का, और दोनों असल हैं। तो अन्नहु अकर्र बिशैअैनी, कि इस गुलाम ने दो चीजों का इकरार किया है, बिल कतई, एक तो कता का, वह हुआ अला नफसिही, और यह इकरार उसने अपनी जात के खिलाफ किया है, ये इकरार उसने अपनी जात के खिलाफ किया है। फयसिहु अला मा ज़करना हु, तो यह इकरार सही होगा उस वजह से जो हमने जिक्र कर दिया, ये इकरार उसने खुद अपनी जात के खिलाफ किया है, तो उसका ये इकरार मुआतबर होगा उस वजह से जो हमने पीछे जिक्र कर दी कि ये जो इसने इकरार किया है ये आदमी होने की हैसियत से किया है, ये एक जुर्म का इकरार कर रहा है और ये मुकल्लफ है, शरीयत ने इसको भी चोरी से मना किया है, तो ये मुकल्लफ होने की हैसियत से इकरार कर रहा है, लिहाजा इसका यह इकरार मुआतबर है। तो कहते हैं कि इसने दो चीजों का इकरार किया है, बिल कतई, एक तो हाथ काटने का, वह हुआ अला नफसी ही, और यह इकरार उसने अपनी जात के खिलाफ किया है, फयसे हो, तो यह इकरार सही होगा, अला मा जकर ना हो, उस वजह से जो हमने जिक्र कर दिया कि यह आदमी होने की हैसियत से इकरार कर रहा है। वह बिल माली, और दूसरा इकरार उसने माल के बारे में किया है, वह हुआ अलल मौला, और यह इकरार उसने आका के खिलाफ किया है, फला यसे खुफी हक ही, लिहाजा आका के हक में यह इकरार सही नहीं, फी ही उस माल के अंदर, आका के हक में उस माल के अंदर यह इकरार सही नहीं। तो कहते हैं वह बिल माली, और दूसरा इकरार इसने माल का किया है, वह हुआ अलल मौला, और वह इकरार आका के खिलाफ है, फला यसे खुफी हक ही फी ही, तो लिहाजा यह इकरार आका के हक में सही नहीं है, फी ही उस माल के अंदर। वल कत्उ युस्तहक्कु बिदूनिही, और कता जो है यानी हाथ का काटना, युस्तहक्कु, इसका तो इस्तेहकाक होता है, बिदूनिही ऐ बिदूनिल माली, माल के बगैर भी। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि चोरी के मसले में कता और माल दोनों असल हैं, दोनों में से एक भी दूसरे के ताबे नहीं है। पीछे इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने बतला दिया था कि बाद सूरतों में सिर्फ माल आता है और कता नहीं आता, माल आता है कता नहीं आता, मालूम माल असल है और कता ताबिया है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है कि कता हो और माल ना हो। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं नहीं, माल के बगैर भी कता हो सकता है, मालूम कता भी माल के ताबिया नहीं है। और वो इस तरह कहते हैं, मसलन देखो, एक चोर ने इकरार कर लिया कि ये जो जैद के पास कपड़ा है ये मैंने अमर से चोरी किया था। कपड़ा किसके पास है? जैद के पास। और चोर इकरार कर रहा है कि ये कपड़ा मैंने अमर से चोरी किया था, तो याद रखो इस सूरत में चोर का हाथ काटा जाएगा, लेकिन वो कपड़ा जैद से लेकर अमर को नहीं दिलाया जाएगा, क्योंकि जैद मसलन कह रहा है कि ये मेरा अपना कपड़ा है। चोर तो क्या कहता है, ये कपड़ा मैंने किससे चुराया था? अमर। कपड़ा है जैद के पास और चोर कह रहा है मैंने ये कपड़ा किससे चोरी किया था? अमर से। तो चोर का हाथ तो काटा जाएगा, लेकिन जैद कह रहा है ये कपड़ा तो मेरा अपना है, लिहाजा जैद से वो कपड़ा लेकर अमर को नहीं दिलाया जाएगा। तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं देखो इस मसले के अंदर कता तो साबित हो रही है लेकिन माल साबित नहीं हो रहा, माल नहीं वापस करना पड़ा। तो मालूम हुआ कता बगैर माल के साबित हो सकती है। तो यहां पर भी इसी तरह अब्द महजूर ने चोरी की है, तवज्जो है, अब्द महजूर ने चोरी की है और मुअय्यन दिरहमों के बारे में कहता है कि ये वाला माल मैंने फुलां से चोरी किया था, तो यहां चोर का हाथ काटा जाएगा और माल भी वापस नहीं किया जाएगा। जैसे उस कपड़े के मसले के अंदर इकरार करने वाले का हाथ तो काटा गया था लेकिन कपड़ा अमर को वापस नहीं दिलाया गया था, तो यहां पर भी अब्द महजूर ने मुअय्यन माल की चोरी का इकरार किया है तो अब्द महजूर का हाथ तो काटा जाएगा लेकिन यह माल उस अजनबी को वापस नहीं किया जाएगा। तो कहते हैं वलकतु युस्ताहकु बिदूनिही, और कता जो है इसका इस्तेहकाक होता है माल के बगैर भी, यानी माल के बगैर भी कभी कभार चोर कता का मुस्तहिक हो जाता है। कमा इदा काल अल हुर्रु, जैसे कि कोई आजाद आदमी कहे अस्सौबुल लदी फी यदि ज़ैदिन, कि वो कपड़ा जो जैद के हाथ में है या वो कपड़ा जो जैद के कब्जे में है, सरक़तुहु मिन अमरिन, ये कपड़ा मैंने अमर से चोरी किया था, व जैद यकूल हुआ सऊबी, और हाल यह है कि जैद कह रहा है कि यह मेरा अपना कपड़ा है, तो युक्ताउ यदुल मुकिर्री, तो उस इकरार करने वाले का हाथ काटा जाएगा, व इनका नला युसद्दकु फी तायीन इस सऊबी, अगरचे कपड़े की तायीन के सिलसिले में उसकी तस्दीक नहीं की जाएगी, हत्ता ला युखदु मिन ज़ैदिन, यहां तक कि वह कपड़ा जैद से नहीं लिया जाएगा, जैद से लेकर वो कपड़ा अमर को नहीं दिया जाएगा। तो मालूम हुआ यहां पर जिस तरह कता तो साबित हो गई लेकिन माल उस मसरूक मिनहू को वापस नहीं दिलाया गया, इसी तरह इस गुलाम के मसले में भी गुलाम ने जब चोरी का इकरार किया है तो इसका हाथ तो काटा जाएगा लेकिन वो 10 दिरहम वो जो मुअय्यन मौजूद हैं वो उस मसरूक मिनहू को वापस नहीं किए जाएंगे। बात समझ में आ गई? भाई याद रखना हत्ता ला युखदु मिन ज़ैदिन, भाई याद रखना यहां पर भी ये हत्ता नसब नहीं देगा क्योंकि हत्ता के नसब देने की शराइत यहां पर पूरी नहीं, तो हत्ता ला युखदु मिन ज़ैदिन, यहां तक कि वो माल जैद से नहीं लिया जाएगा। आगे देखिए वली अबी हनीफा रहिमहुल्लाहु ताला, अब इमाम साहेब की दलील आ गई। इमाम साहेब क्या फरमाते हैं कि ये अब्द महजूर जिसने मुअय्यन दिरहमों की चोरी का इकरार किया है इसका हाथ भी काटा जाएगा और वो दिरहम भी मसरूक मिनहू को वापस किए जाएंगे। वली अबी हनीफा रहमहुल्ला, और इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्ला की दलील ये है कि अन्नल इकरार बिल कत्अ कद सहा मिनहू, कि ये जो हाथ काटने का इकरार है कद सहा मिनहू, ये इस गुलाम की तरफ से सही है, लिमा बैयन्ना, उस वजह से जो हमने बयान कर दिया। ये जो चोरी का इकरार कर रहा है यानी हाथ काटने का इकरार कर रहा है ये इकरार सही है उस वजह से जो हमने पीछे बयान कर दिया कि वो ये इकरार आदमी होने की हैसियत से कर रहा है और आदमी होने की हैसियत से तो ये मुकल्लफ है, जिम्मेदार है और इसने चोरी की है, जुर्म किया है, तो इसका हाथ काटा जाएगा। भाई तो इमाम साहब की दलील यह है कि अनल इकरार बिल कतई, कि इस चोर का हाथ के काटने का इकरार करना कद सहा मिनहू, ये इसकी तरफ से सही ही है, लिमा बैयन्ना, उस वजह से जो हमने बयान कर दिया। फयसिहु बिल माली, तो जब इकरार कता के लिए सही है, फयसिहु बिल माली, तो माल के लिए भी ये इकरार सही होगा, क्योंकि कता असल है और माल उसके ताबे, तो जब असल के लिए इकरार सही है तो माल के लिए भी इकरार सही होगा। तो कहते हैं फयसिहु बिल माली, तो माल पर भी इकरार सही होगा, बिना अन अलैही, उसी बुनियाद पर, जब कता के लिए इकरार सही है तो उसी बुनियाद पर माल के लिए भी इकरार सही है, क्योंकि माल ताबिअ है भाई। लिअन्ना लिकरार युलाकी हालत अल बकाई, इसलिए क्योंकि ये जो इकरार किया है इस गुलाम ने, युलाकी, इस इकरार ने मुलाकात की है, हालत अल बकाई, बका की हालत के साथ। बका की हालत से मुराद है चोरी की बका की हालत, चोरी की बका की हालत। भाई देखो, इकरार के अंदर खबर दी जाती है माजी के किसी फेल के बारे में कि मैंने माजी में इस तरह किया था, तो इसके लिए उस फेल का होना जरूरी है। जब वो फेल पाया गया है तभी आप उसके बारे में खबर दे सकते हैं कि मैंने ऐसा किया था। तो यहां पर भी चोर ने जब इकरार किया है तो माजी के अंदर चोरी कर चुका है, तो इस वक्त चोरी की बका की हालत है जी। चोरी की इब्तिदा नहीं है, इब्तिदा तो चोरी की उस वक्त थी जब वो माल उठा रहा था, बल्कि ये अब तो चोरी हो चुकी है, तो ये चोरी की बका की हालत है। तो चोर जिस वक्त इकरार कर रहा है वो बकाए सरिका की हालत में इकरार कर रहा है भाई, और बकाए सरिका की हालत में माल ताबिअ होता है जी। बकाए सरिका की हालत में माल ताबिअ होता है। देखिए भाई, कहते हैं लिअन्न अल इकरार युलाकी हालत अल बकाई, इसलिए क्योंकि इस गुलाम का ये जो इकरार है, युलाकी, इसने मुलाकात की है, हालत अल बकाई, चोरी के बाकी रहने की हालत के साथ, वल मालुफी हालत अल बकाई ताबिउन लिल कतई, और माल जो है चोरी की बका की हालत में कता के ताबे होता है, कता असल और माल उसके ताबिअ होता है। अब बयान करेंगे किस तरह कता असल होता है और माल ताबिअ होता है बका की हालत में, यानी जब चोरी बाकी है। कहते हैं वल मालु फी हालतिल बकाई ताबिउन लिल कतई, और माल जो है चोरी के बाकी होने की हालत में कता के ताबे होता है, हत्ता तस्कुतु इस्मतुल माली बेअतिबारी ही। भाई याद रखना, यहां पर भी ये हत्ता नसब नहीं देगा भाई, तो तस्कुतु पर रफा पड़ेंगे। तो कहते हैं बका की हालत के अंदर माल जो है वो ताबिअ होता है, हत्ता तस्कुतु इस्मतुल माली बेअतिबारी ही, यहां तक के माल की इस्मत साकित हो जाती है, बेअतिबारी ही, कता के एतबार से। चोरी के अंदर जब हाथ काट दिया जाए तो माल की इस्मत साकित हो जाती है, मालूम हुआ कता असल है और माल उसके ताबे। तो कहते हैं हत्ता तस्कुतु इस्मतुल माली बेअतिबारी ही, यहां तक कि कता के एतबार से माल की इस्मत साकित हो जाती है, वह युस्तौफल कतउ बाद इस्तिहलाकी ही। ये दूसरी दलील जिक्र कर रहे हैं कि कता असल है और माल उसके ताबे है। कहते हैं चोर अगर चोरी कर ले और चोरी करने के बाद वो सारा माल खर्च कर दे, फिर भी उसका हाथ काटा जाता है, हालांकि माल खत्म हो चुका है, मालूम हुआ कता असल है और माल ताबे। ये माना है वही उस्तौफल कतउ बाद इस्तिहलाकी ही, और कता को वसूल किया जाता है उस माल के इस्तेहलाक के बाद भी। मैंने आपको बतलाया था एक है हलाक और एक है इस्तेहलाक। हलाक का माना है खुद ब खुद एक चीज का हलाक हो जाना जिसमें आदमी का दखल ना हो, और इस्तेहलाक वो है जिसमें उस आदमी के फेल का दखल हो कि वो खुद उस माल को खर्च करता है या खुद उसको उठाकर दरिया में फेंक देता है, तो ये है इस्तेहलाक भाई। तो कहते हैं वही उस्तौफल कतउ बाद इस्तेहलाकी ही, और माल के हलाक कर देने के बाद भी कता को वसूल किया जाएगा, बिखिलाफ मसअलतिल हुर्री, बखिलाफ आजाद आदमी के मसले के। यहां से जवाब दे रहे हैं इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ने इस गुलाम के मसले को कियास किया था आजाद आदमी के मसले पर, कि एक आजाद आदमी ने इकरार कर लिया कि ये जो कपड़ा जैद के पास है ये मैंने अमर से चोरी किया था। तो आपने पढ़ा कि सूरत में चोर का हाथ तो काटा जाएगा, लेकिन वो कपड़ा अगर जैद कहता है मेरा अपना कपड़ा है तो वो अमर को वापस नहीं दिलाया जाएगा। तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ने इस गुलाम के मसले को कियास किया उस आजाद आदमी के मसले पर, वो जो आजाद आदमी ने चोरी का इकरार किया था, तो उसका जवाब देने लगे हैं कि नहीं, आप गुलाम के मसले को आजाद आदमी के मसले पर कयास नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों मसले एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, और एक जैसी चीजों को एक दूसरे पर कयास करते हैं, दो मुख्तलिफ चीजों को एक दूसरे पर कयास नहीं करते। किस तरह भाई, देखिए भाई, इमाम साहब मसले की कितनी गहराई में चले जाते हैं, इंसान हैरान रह जाता है। तो कहते हैं बिखिलाफ ही मसअलतिल हुर्री, बखिलाफ उस आजाद आदमी के मसले के, लिअन्न अलकत्अ इन्नमा يجب بالسرقه من المودعي اما لا يجب بسرقه العبد مال المولى। भाई देखिए, पहले बात समझ लीजिए, कहना यह चाहते हैं कि वो जो आजाद आदमी का मसला है वो इस गुलाम के मसले की तरह नहीं है जी। इसकी तरह नहीं, इसलिए क्योंकि उस आजाद आदमी के मसले में वो चोर कह रहा है कि यह माल मैंने अमर से चोरी किया था, तो किसी से माल चोरी करने से यह साबित नहीं होता कि यह माल इसी आदमी का था। हो सकता है इसके पास वो माल बतौर अमानत के हो, ये कपड़ा इस वक्त जैद के पास है और जैद कह रहा है ये मेरा अपना कपड़ा है, तो हो सकता है जैद ने ये कपड़ा अमर के पास बतौर अमानत के रखवाया हो और चोर ने उस अमानत को चोरी किया। लेकिन बहरहाल चाहे मालिक से चोरी करे चाहे अमानत को कोई शख्स चोरी करे, दोनों सूरतों में हाथ काटा जाता है, तो लिहाजा इसलिए वहां पर हाथ काटा जाएगा, इसलिए वहां पर हाथ काटा जाएगा। लेकिन गुलाम के मसले में आप यह नहीं कह सकते कि गुलाम का हाथ तो काटा जाए और यह माल उस मसरूक मिनहू को वापस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप यह माल मसरूक मिनहू को वापस नहीं करते तो इसका तो मतलब है गुलाम ने आका का माल चुराया था जी। मालूम हुआ आका ने ही यह माल उस मसरूक मिनहू के पास बतौर अमानत के रखवाया था और गुलाम चोरी करके ले आया। अब आप कह रहे हैं कि यह माल आका का है, आका का तो तभी हो सकता है ना जब आका का यह माल उसके पास बतौर अमानत के था, आका का माल उसके पास बतौर अमानत के मौजूद था, फिर ही आप कह सकते हैं यह आका का माल है। और जब यह आका का माल है तो उसके अंदर तो गुलाम का हाथ नहीं काटा जाता, चाहे आका से चोरी करे चाहे आका ने किसी के पास बतौर अमानत के रखवाया हो उससे चोरी कर ले, दोनों सूरतों में गुलाम का हाथ नहीं काटा जा सकता। आजाद आदमी चाहे मालिक से चोरी करे चाहे मुदा यानी जिसके पास अमानत रखवाई गई थी, आजाद आदमी चाहे मालिक से चोरी करे चाहे मुदा से चोरी कर ले, दोनों सूरतों में उसका हाथ काटा जाता है। लेकिन गुलाम चाहे अपने आका से चोरी करे या चाहे अपने आका के मुदा से आका का माल चोरी कर ले, दोनों सूरतों में गुलाम का हाथ नहीं काटा जा सकता। तो लिहाजा अगर आप यह कहते हैं कि गुलाम का हाथ तो काटो लेकिन माल नहीं वापस करना, जब माल वापस नहीं करना मालूम हुआ यह माल किसका है, आका का है, तो फिर आका के माल के अंदर आप गुलाम का हाथ कैसे काट सकते हैं जी। फर्क समझ में आ रहा है? तो कहते हैं बिखिलाफ ही मसअलतिल हुर्री, बखिलाफ उस आजाद आदमी के मसले में, लिअन्न अलकत्अ इन्नमा यजिबु बिस्सरिकति मिनल मुदई, इसलिए क्योंकि हाथ का काटना वो तो वाजिब हो जाता है मुदा से चोरी के अंदर भी, मुदा से भी अगर माल चोरी किया जाए तो हाथ का काटना वाजिब हो जाता है। अम्मा ला यजिबु बिस्सरिकति अब्दी माल अल मौला, बाकी आका के माल को अगर गुलाम चोरी करे तो उसके अंदर कता वाजिब नहीं होता, चाहे आका से बराहे रास चोरी करे चाहे आका ने किसी के पास बतौर अमानत के रखवाया हो। तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह का मजहब क्या था कि गुलाम का हाथ काटेंगे और माल वापस नहीं करेंगे। तो इमाम साहब फरमाते हैं नहीं, माल वापस करना पड़ेगा, अगर माल वापस नहीं करते, आप इस माल को आका का ही माल करार देते हैं तो इसका मतलब है गुलाम ने आका का माल चोरी किया था, और गुलाम अपने आका का माल चोरी कर ले तो फिर तो उसका हाथ नहीं काटा जा सकता। बात समझ में आ गई? तो यह माना है, कहते हैं अम्मा ला यजिबु बिसरिकतिल अब्दी माल अल मौला, बाकी गुलाम अगर आका के माल को चोरी कर ले तो उसकी वजह से हाथ काटना वाजिब नहीं होता। फाफ्तारकात, तो ये दोनों हुक्म एक दूसरे से जुदा हो गए भाई। एक हुक्म वो था जो आजाद आदमी के मसले में था और एक हुक्म जो है वो गुलाम के मसले में है, तो आप एक को दूसरे पर कियास नहीं कर सकते। फाफ्तारकात, तो ये दोनों मस्कूरा हुक्म एक दूसरे से जुदा हो गए। यहां तक बात समझ में आ गई, मसला मुकम्मल हो गया। यह सारा मसला और यह सारा इख्तिलाफ उस सूरत में था जब आका गुलाम की तकजीब करे कि तुम झूठ बोल रहे हो, यह मेरे अपने दिरहम हैं। लेकिन अगर आका तस्दीक कर दे फिर याद रखो फिर हमारे अइम्मा का इख्तिलाफ नहीं, इस सूरत में फिर गुलाम का हाथ भी काटा जाएगा और वो माल भी मसरूख मिनहू को वापस किया जाएगा। तो अब यही बयान कर रहे हैं, कहते हैं वलौ सद्दकहुल मौला, और अगर आका ने गुलाम की तस्दीक कर दी, युक्तउ फिल फुसूल कुल्लिहा, तो तमाम फसलों के अंदर गुलाम का हाथ काटा जाएगा, यानी तमाम सूरतों में, चाहे अब्दे महजूर हो और चाहे अब्दे माजून हो, चाहे माले मुअय्यन हो चाहे माले गैर मुअय्यन हो, यानी मुस्तहल लक हो भाई। तो कहते हैं वलौ सद्दकहुल मौला, और अगर आका ने गुलाम की तस्दीक कर दी, युक्तउ फिल फुसूल कुल्लिहा, तो उस गुलाम का हाथ काटा जाएगा इन तमाम फसलों के अंदर, यानी तमाम सूरतों में, लिज़वालिल मानिअ, मानिअ के खत्म हो जाने की वजह से। पहले मानिअ क्या था कि आका गुलाम को झुटला रहा था, और जब आका तस्दीक कर रहा है तो अब कोई मानिअ नहीं है, तो ये माना है। तो फिर तमाम सूरतों में हाथ काटा जाएगा, लिज़वालिल मानिअ, माने के खत्म हो जाने की वजह से। आगे देखिए भाई, قال وإذا قطع السارق والعين قائمة في يده ردت إلى صاحبها لبقائها على ملكه। भाई मैंने ये मसला पहले भी आपको बतलाया था कि अगर चोरी के अंदर चोर का हाथ काट दिया गया लेकिन वो माल अभी चोर के पास मौजूद है, तो फिर इस सूरत में याद रखो वो माल मालिक को वापस दिलाया जाएगा, क्योंकि उस माल के अंदर मालिक की मिल्कियत अभी भी मौजूद है, अभी भी वही शख्स उस माल का मालिक है। लेकिन अगर वो माल चोर ने खर्च कर दिया है या वो चोर के पास हलाक हो गया है, तो इन सूरतों के अंदर फिर चोर पर जमान नहीं आएगा, क्योंकि हमारे नजदीक कता और जमान इकट्ठे नहीं हो सकते। तो कहते हैं काल साहिब कुदूरी फरमाते हैं, वह ईदा कुतिया सारिकू, और जब चोर का कता कर दिया गया यानी उसका हाथ काट दिया गया, वल आइनु का इमतुन फी यदी ही, इस हाल में कि वो चीज जो है उसके कब्जे में मौजूद है, वो चीज अभी भी उसके कब्जे में मौजूद है, रुद्दत इला साहिबिहा, तो वो चीज वापस लौटाई जाएगी उस चीज के मालिक को, लिबका इहा अला मिल की ही, इसलिए क्योंकि वो चीज अभी भी उस मालिक की मिल्कियत पर बाकी है। याद रखो चोर के पास ही होना जरूरी नहीं है उस चीज का, चाहे चोर के हाथ से निकल गई है, चोर ने आगे किसी और को तोहफे के तौर पर दे दी या चोर ने किसी को बेच दी है, लेकिन वो चीज अभी भी मौजूद है, तो इस सूरत के अंदर भी वो माल मालिक को वापस लौटाया जाएगा। वो बेया हिबा बातिल है तो वो माल मालिक को वापस लौटाया जाएगा भाई। आगे देखिए, वह इनकानत मुस्तहलकतल्लम यजमन, और अगर वो माल जो है मुस्तहलक हो चुका है यानी उसको हलाक कर दिया गया है, इस चोर ने खुद क्या कर दिया, उसको खर्च कर दिया या जाया कर दिया, तो लम यजमन, तो इस सूरत में वो जामिन नहीं होगा। तो कहते हैं वह इनकानत मुस्तहलकतल्लम यजमन, और अगर वो माल हलाक कर दिया गया है तो फिर चोर जामिन नहीं होगा। वहादल इतलाक यशमलुल हलाक वल इस्तेहलाका, और ये इतलाक शामिल है हलाक और इस्तेहलाक को। भाई कुदूरी के अंदर तो मुतलकन आया वह इनकानत मुस्तहलकतन, अगर वो माल हलाक कर दिया गया है, लेकिन साहिब हिदायत बतला रहे हैं कि यह इतलाक शामिल है हलाक को भी और इस्तेहलाक को भी, दोनों सूरतों के अंदर चोर पर जमान नहीं आएगा, चाहे वो माल उसके पास खुद ब खुद हलाक हो गया यानी उससे कोई और चुरा कर ले गया, या माल वो उसके पास किसी आसमानी आफत से खुद जाया हो गया, तब भी जमान नहीं है, और अगर चोर ने खुद जाया किया है या खर्च किया है फिर भी जमान नहीं है। तो कहते हैं वहाद अल इतलाक यशमलुल हलाक वल इस्तेहलाका, और ये जो इतलाक है यानी साहिब कुदूरी ने ये जो मुतलकन जिक्र फरमाया, यशमलुल हलाक वल इस्तेहलाका, ये हलाक और इस्तेहलाक दोनों को शामिल है। वह हुआ रिवायत अबी यूसुफ रहिमहुल्लाह तआला अन अबी हनीफा रहिमहुल्लाह, और ये इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह की रिवायत है इमाम साहिब से। वह हुवल मशहूर, और यही रिवायत मशहूर है जी। ये रिवायत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ने की है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह से, और यही रिवायत मशहूर है भाई कि माल अगर हलाक हो चुका है तो चोर पर जमान नहीं आएगा। वरवल हसन रहिमहुल्लाह ताला अनहु, और हसन इब्ने ज़ियाद रहमहुल्लाह ने इमाम साहब से रिवायत किया है कि अन्नहु यज़मनु बिल इस्तेहलाकी, कि वो चोरी करने वाला जामिन होगा बिल इस्तेहलाकी, उस माल को हलाक करने की सूरत में। अगर चोर ने खुद वह माल खर्च किया है या जाया किया है फिर उस पर जमान आएगा। तो मालूम हुआ इमाम साहिब से इस सिलसिले में दो रिवायतें हैं। एक रिवायत हसन इब्ने ज़ियाद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इमाम साहिब के नजदीक अगर वो माल चोर के पास हलाक हुआ है फिर तो जमान नहीं आएगा, लेकिन अगर चोर ने खुद हलाक किया है फिर उस पर जमान आएगा। जबकि मशहूर रिवायत के मुताबिक इमाम साहब के नजदीक किसी सूरत में भी चोर पर जमान नहीं आएगा, चाहे हलाक हो और चाहे इस्तेहलाक हो। भाई तो कहते हैं वरावल हसन रहिमहुल्लाह ताला अन्हु, और हसन इब्ने ज़ियाद रहमतुल्लाह ने इमाम साहब से रिवायत किया है कि अन्नहु यज़मनु बिल इस्तेहलाकी, कि ये चोर जो है इस्तेहलाक की सूरत में जामिन होगा। वकाल शाफई रहिमहुल्लाह, और इमाम शाफई रहमतुल्लाह फरमाते हैं यज़मनु फीहिमा, कि दोनों सूरतों में जामिन होगा, चाहे चोर के पास माल खुद हलाक हुआ है चाहे उसने हलाक किया है, दोनों सूरतों में चोर जामिन होगा। मालूम हुआ इमाम शाफई रहमहुल्लाह के नजदीक कता और जमान जमा हो सकते हैं। चोर ने चोरी की है और उसके पास माल हलाक हो गया है या उसने खुद हलाक किया है तो उसका हाथ भी काटा जाएगा और जमान भी लिया जाएगा। तो हमारे नजदीक कता और जमान जमा नहीं हो सकते, जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक कता और जमान जमा हो सकते हैं। तो कहते हैं वकाल शाफई रहिमहुल्लाह, और इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं या जमानु फीहिमा, कि वो चोर जो है इन दोनों सूरतों में जामिन होगा, यानी चाहे हलाक हो या चाहे इस्तेहलाक हो। लिअन्नहुमा हक्कानी कद इख्तलफा सबबाहुमा, लिअन्नहुमा हक्कानी, इसलिए क्योंकि ये दो हक हैं, एक है कता और एक है जमान। कता अलग हक है, ये शरीयत का हक है, और जमान अलग हक है और ये बंदे का हक है कि उसको उसके माल का जमान दिया जाए। भाई तो कहते हैं लिअन्नहुमा हक्कानी, इसलिए क्योंकि ये कता और जमान जो हैं दो ऐसे हक हैं। कद इख्तलफा सबबाहुमा, कि इन दोनों के सबब मुख्तलिफ हैं। कता और जमान दो ऐसे हक हैं जिनके सबब मुख्तलिफ हैं। किस तरह सबब मुख्तलिफ हैं वो आगे साहिब हिदायत बयान फरमा रहे हैं। कहते हैं लिअन्नहुमा हक्कानी कद इख्तलफ सबबाहुमा, इसलिए क्योंकि ये कता और जमान दो ऐसे हक हैं कि इन दोनों के सबब मुख्तलिफ हैं। फला यम्तनिआनी, लिहाजा ये दोनों मुमतनिअ नहीं होंगे, यानी एक की वजह से दूसरा मुमतनिअ हो जाए और न आ सके ऐसा नहीं है, बल्कि दोनों हक साबित होंगे। तो कहते हैं फला यम्तनिआनी, तो ये दोनों हक जो है मुमतनिअ नहीं होंगे। फलकतउ हक्कु शरई, तो हाथ का काटना जो है हक्कु शरई, वो शरीयत का हक है। वसबबुहु, और इस हाथ काटने का जो सबब है तरकुल इंतहाई, इंतहा का माना है बाज आ जाना, रुक जाना। तरकुल इंतहाई, रुकने को तर्क करना, रुकने को तर्क करना, भाई किस चीज से रुकना। कहते हैं अम्मा नुहिया अनहु, उस चोरी से जिससे मना किया गया था। अम्मा मां से क्या मुराद है यहां, चोरी, क्योंकि चोरी का मसला चल रहा है। वह सबबुहु, इस कता का जो सबब है तरकुल इंतहा अम्मा नुहिया अनहु, वो चीज जिससे मना किया गया था उससे रुकने को छोड़ देना, उससे बाज आने को छोड़ देना। चोर उससे बाज नहीं आया, उसको तो कहा गया था चोरी नहीं करनी लेकिन ये उससे नहीं रुका। जी तर्जमा फिर देख लीजिए, कहते हैं वसबबुहु तरकुल इंतहा अम्मा नुहिया अनहु, और इस हाथ काटने का जो सबब है तरकुल इंतहा अम्मा नुहिया अनहु, वो चोरी जिससे मना किया गया था उससे रुकने को छोड़ देना, उससे बाज आने को तर्क कर देना, ये इसका सबब है। वह जमान हक्कुल अब्दी, और जो माल का जमान है वो बंदे का हक है। वह सबबुहु अखजुल माली, और उसका सबब जो है चोर का उस माल को लेना है, कि चोर ने वो माल लिया था तो अब उसको जमान देना पड़ेगा। फसारा का इस्तेहला की सैद ममलूक इन फिल हारामी, तो ये ऐसे ही हो गया जैसे किसी ममलूका शिकार को हलाक कर दिया जाए الحرم میں او شرب خمر مملوکت للذمی، یا یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی ذمی کی مملوکہ شراب پی لی جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کی دلیل چل رہی ہے، وہ فرماتے ہیں ایک ہے قطع اور ایک ہے زمان، قطع کا سبب اور، لہذا قطع بھی وصول کی جائے گی، اور زمان کا سبب اور، لہذا زمان بھی وصول کیا جائے گا۔ وہ فرماتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے کہ حرم کے اندر کوئی کسی کے مملوکہ شکار کو ہلاک کر دے۔ بھئی یاد رکھو، زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے جو پہلا گھر بنایا گیا وہ ہے بیت اللہ۔ بھئی تو جیسے اس بیت اللہ کی عظمت ہے، اسی طرح بیت اللہ کے ارد گرد کا جو قریب کا علاقہ ہے، شریعت نے اس کی بھی تعظیم کا حکم دیا۔ تو بیت اللہ کے ارد گرد کا یہ علاقہ جو ہے یہ حرم کہلاتا ہے۔ حرم کے اندر کسی کو کسی قسم کی تکلیف دینے کی اجازت نہیں، اجازت تو ویسے بھی نہیں ہے کسی کو دوسرے کو تکلیف دینے کی، لیکن حرم کے اندر تو بالخصوص یہ اور زیادہ بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ چنانچہ حرم کے اندر آپ کو درخت کاٹنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اسی طرح حرم کے اندر آپ کو شکار کھیلنے کی بھی اجازت نہیں ہے، یعنی کسی چیز کو آپ یہاں تکلیف نہیں دے سکتے۔ اور یاد رکھو، حرم کے اندر اگر کوئی شخص شکار کر لیتا ہے تو اس پر جرمانہ آئے گا، اس کو اس جانور کی قیمت جو ہے وہ فقراء پر صدقہ کرنا پڑے گی۔ حرم کے اندر اگر کوئی شکار کر لے تو اس پر جرمانہ آئے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو چوری ہے اس کے اندر ایک ہاتھ کا کاٹنا ہے اور ایک زمان ہے، دونوں کا سبب الگ الگ ہے، لہذا دونوں چیزیں وصول کی جائیں گی۔ یہ اسی طرح ہے جیسے حرم کے اندر کوئی کسی کے مملوکہ شکار کو ہلاک کر دے، تو حرام کے اندر اس نے شکار ہلاک کیا ہے، لہذا اس کی جزا بھی اس پر واجب ہوگی، اور نیز یہ شکار تو کسی کا مملوکہ تھا تو مالک کو بھی اس کی قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ توجہ ہے، کیونکہ دونوں الگ الگ حق ہیں، ایک شریعت کا حق ہے اور ایک اس مالک کا حق ہے۔ شریعت کا حق اس لیے ہے کیونکہ شریعت نے تو حرم کے اندر شکار کو ہلاک کرنے سے منع کیا تھا اور اس نے شکار کو ہلاک کیا ہے، لہذا اس پر جزا واجب ہوگی۔ اور نیز دوسرا حق جو ہے وہ اس آدمی کا ہے کہ اس نے ایک آدمی کے مملوکہ چیز کو ہلاک کیا ہے، تو اس آدمی کو بھی اس شکار کی قیمت دینا پڑے گی۔ اور یا کہتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی کسی ذمی کی شراب پی لے، ایک مسلمان نے ایک ذمی کی شراب پی لی، تو اس صورت میں اس مسلمان کو حد بھی لگائی جائے گی کیونکہ اس نے شراب پی ہے، اور اس پر زمان بھی آئے گا کہ اس نے ذمی کا مال ضائع کیا ہے، تو لہذا اس کو زمان بھی دینا پڑے گا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جیسے یہ حرام کے اندر مملوکہ شکار کو ہلاک کرنا یا کسی ذمی کی مملوکہ شراب کو پی لینا، اس کے اندر دو حق ہیں، دونوں کا سبب الگ الگ ہے، تو دونوں حق وصول کیے جاتے ہیں۔ تو یہاں اسی طرح چوری کے اندر بھی دو الگ الگ حق ہیں، دونوں کا سبب الگ ہے، تو دونوں حق وصول کیے جائیں گے، ہاتھ بھی کاٹا جائے گا اور زمان بھی لیا جائے گا۔ تو یہ مانا ہے فسار کستحلا کی سعید مملوک ان فی الحرمی، تو یہ اسی طرح ہو گیا جیسے حرم کے اندر کسی مملوکہ شکار کو ہلاک کر دیا جائے، او شرب خمر مملوکت للذمی، یا یہ اسی طرح ہو گیا جیسے کسی ذمی کی مملوکہ شراب جو ہے وہ پی لی جائے۔ ولنا قوله علیہ الصلاۃ والسلام، اب ہماری دلیل آ گئی بھائی، ولنا قوله علیہ الصلاۃ والسلام، اور ہماری دلیل جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے کہ آپ نے فرمایا لا غرم علی السارق بعد ما قطعت یمینہ، لا غرم علی السارق، غرم کہتے ہیں زمان کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا غرم علی السارقی، کہ چور پر کوئی زمان نہیں ہے، بعد ما قطعت یمینہ، بعد اس کے جب اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا گیا، جب چور کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا گیا تو اب اس پر کوئی زمان نہیں ہے، یہ حدیث کے اندر ہے۔ یہ تو تھی نقلی دلیل، اب عقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں صاحب ہدایہ۔ بھائی انسان احناف کے دلائل سنتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے فقہا بات کی کتنی گہرائی تک جاتے ہیں۔ عقلی دلیل سنیے بھائی، کہتے ہیں ولی ان وجوب الزمانی ینافی القطع، ہم کہتے ہیں اگر چور پر زمان بھی واجب کر دیا جائے تو یہ زمان تو قطع کے منافی ہے، اگر زمان آئے گا تو پھر قطع نہیں کیا جا سکتا، اور جب قطع کیا جائے تو پھر زمان نہیں آ سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ چور پر زمان واجب کریں گے तो उस जमान के अदा करने से चोर उस माले मसरूक का मालिक बन जाएगा। चोर माले मसरूक का मालिक बन जाएगा भाई, इसलिए क्योंकि चोर जब इवज दे रहा है तो अब इवज का मालिक वो मसरूक मिनहू बन गया। तो अगर माले मसरूका का मालिक भी अभी भी वही शख्स हो, फिर तो इवजैन एक ही आदमी की मिल्क में जमा हो गए। मसरूक मिनहू वो माल भी उसी का है और इवज भी आपने उसको दे दिया, तो दोनों बदल एक ही आदमी की मिल्क में जमा हो गए। हालांकि बदल और मुबदल का मालिक एक ही शख्स नहीं हो सकता। तो लिहाजा जब जमान आप चोर से ले रहे हैं तो कहना पड़ेगा कि जिस वक्त चोर जमान अदा करेगा वो उस चीज का मालिक बन जाएगा। और याद रखो, जब चोर मालिक बनेगा तो ये नहीं कहेंगे चोर अभी मालिक बना है, बल्कि जिस वक्त चोर इस सामान को उठा रहा था हम कहेंगे उसी वक्त से चोर माल का मालिक बन गया। जमान आज अदा कर रहा है, लेकिन मालिक कब से शुमार करेंगे? जिस वक्त ये चोरी कर रहा था और सामान उठा रहा था उस वक्त से ही मालिक है। जब उस वक्त से ही मालिक है तो मालूम है चोर ने तो अपना माल उठाया है। जब अपना माल उठाया था तो आप उसका हाथ कैसे काट सकते हैं? तो अगर आप जमान वाजिब करें तो फिर चोर का हाथ नहीं काटा जा सकता। तो यह माना है, कहते हैं वली अन्ना वजूब जमानी युनाफिल कता, कहते हैं इसलिए क्योंकि जमान का वाजिब होना यह कता के मुनाफी है। ली अन्ना यतमल्लकुहू भी अदा इस जमानी, इसलिए क्योंकि चोर जो है उस माल का मालिक बन जाएगा जमान अदा करने की वजह से। मुस्तनिदन इला वक्त इल अखजी, और इस मालिक बनने की निस्बत होगी उठाने के वक्त की तरह, कि जिस वक्त उस चोर ने उस सामान को उठाया था उस वक्त से ही यह मालिक है। तो यह माना है मुस्तनिदन इला वक्त इल अखजी, और इस मालिक होने की निस्बत होगी उस उठाने के वक्त की तरफ। फतबयना अन्नहु वरदा अला मिल्की ही, तो यह बात जाहिर हो गई कि यह माल का उठाना वारिद हुआ था अला मिल्की ही, चोर की अपनी मिल्कियत पर। चोर ने अपने ही माल को उठाया था, जब अपने ही माल को उठाया था फयन तफिल कतुली शुभहती, तो कता जो है वो मुंतफी हो जाएगी शुबे की वजह से। कता मुंतफी हो जाएगी शुबे की वजह से, क्योंकि चोर जमान अदा करने की वजह से मालिक बना है और इस मिल्कियत की निस्बत उस वक्त की तरफ की जाएगी जब इसने माल को उठाया था। तो मालूम है इसने जब माल चोरी किया था तो ये अपना ही माल इसने उठाया था, किसी और का माल नहीं उठाया, तो इसकी वजह से शुबा आ गया। शुबा आ गया, और शुबे की वजह से हद क्या होती है? साकित हो जाती है। और देखिए साहिब हिदायत की फसाहत और बलागत जरा देखिए, देखिए इबारत इन्होंने जिक्र की, ले अन्नहु यतमल्लकुहु भी अदा इस जमानी, इसलिए क्योंकि चोर जो है वो मालिक बन जाएगा जमान अदा करने की वजह से। मुस्तनिदन इला वक्त लखजी, और इस मालिक होने की निस्बत होगी इला वक्त लखजी उठाने के वक्त की तरफ। साहिब हिदाया ये नहीं फरमा रहे इला वक्त सरिकती, चोरी के वक्त की तरफ जी। चोरी के वक्त की तरफ निस्बत नहीं फरमा रहे, इसलिए क्योंकि जब चोर अपना माल उठा रहा है तो ये तो सरिका नहीं है, ये तो अख्ज है, ये तो सरिका नहीं है बल्कि अख्ज है, अपना माल उठा रहा है। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं फतबयना अन्नहु वरदा अला मिल्की ही, तो यह बात जाहिर हो गई कि चोर का माल को जो उठाना है वो उसकी अपनी मिल्कियत पर हुआ था। फयन तफिल कतुली शुबहती, तो लिहाजा हाथ का काटना मुंतफी हो जाएगा शुबे की वजह से। भाई इधर देखिए, चोर जमान आज अदा कर रहा है और मालिक बनने की निस्बत है जब इसने सामान को उठाया था, तवज्जो है, तो हकीकतन उस वक्त मालिक नहीं है बल्कि कह रहे हैं शुबा आ गया, सिर्फ शुबा आया है। क्या आया है? शुबा। वजह यह कि जमान देने से मालिक बन रहा है, जमान से पहले तो मालिक नहीं, तो बाद एतबार से देखें तो जमान के बाद मालिक है, जमान से पहले मालिक ही नहीं है क्योंकि जमान के बाद मालिक बन रहा है। और बाद एतबार से देखें कि निस्बत तो उठाने के वक्त की तरफ की जाएगी, तो उस एतबार से देखें तो जमान से पहले ही यह क्या बन चुका है? मालिक। तो बच्चों है, तो मालूम हुआ उस वक्त चोर का मालिक बनना कतई और यकीनी नहीं है, लेकिन शुबा तो आ गया। और इस शुबे की वजह से हद क्या हो जाएगी, साकित हो जाएगी। यह माना है फयन तफिल कतली शुभहती, तो लिहाजा हाथ का काटना मुंतफी हो जाएगा शुबे की वजह से। वमा यू अद्दी इलन तिफा ही फहुअल मुंतफी, और वो चीज जो कता के इंतफा तक ले जाने वाली हो फहुअल मुंतफी, वो खुद ही मुंतफी होगा। भाई कता तो कुरान से साबित है, चोर का हाथ काटना यह तो कुरान से साबित है, यह तो इजमा से साबित है। लिहाजा जो चीज कता की नफी करेगी खुद उस चीज की नफी हो जाएगी। भाई कता की नफी नहीं हो सकती क्योंकि वो कुरान से और इजमा से साबित है। हां जिस चीज की वजह से कता मुंतफी हो रही है खुद वो चीज ही मुंतफी हो जाएगी, और कता मुंतफी हो रहा है किसकी वजह से, जमान की वजह से, तो लिहाजा जमान ही मुंतफी हो जाएगा। यह माना है वमा यू अद्दी इल इंतफा ही, और वो चीज जो कता के इंतफा तक ले जाने वाली हो फहुअल मुंतफी, तो वो खुद ही मुंतफी है। वली अनल महल्ला यबका मासूमन, ये दूसरी दलील जिक्र कर रहे हैं। दूसरी अकली दलील याद रखो, एक है हराम ली आईनी ही और एक है हराम ली गैरी ही। हराम ली आईनी ही वो है जिसको शरीयत ने हराम करार दिया है, जिसको शरीयत ने हराम करार दिया है वो चीज अपनी जात के एतबार से ही हराम है, और एक वो चीज है जो किसी गैर का हक होने की वजह से हराम हो। मसलन जैद का सामान पड़ा है आपके लिए, जैद का यह सामान वगैरह उठाना हराम है। क्यों हराम है? जैद के हक की वजह से। मसलन कोई खाने की चीज देख ले, जैद की गंदुम पड़ी हुई है, जैद की गंदुम, अब देखो ये गंदुम किसी दूसरे आदमी के लिए बगैर इजाजत के लेना हराम है। क्यों हराम है? जैद के हक की वजह से, वरना खुद गंदुम तो खाने के लिए ही तो इस्तेमाल होती है, तो गंदुम अपनी जात के एतबार से हराम नहीं है, बल्कि यह गंदुम चूंकि जैद का हक है इसलिए हराम है। तो यह इसको कहेंगे हराम ली गैरी ही, यानी यह गंदुम हराम तो है लेकिन अपनी जात की वजह से नहीं बल्कि गैर की वजह से, यानी जैद के हक की वजह से। तो याद रखो हराम दो किस्म पर हैं, एक हराम ली आईनी ही और एक हराम ली गैरी ही। हराम ली आईनी ही वो है जिससे शरीयत ने मना किया है, किसी के हक की वजह से नहीं, वैसे ही शरीयत ने उसको हराम करार दिया है। और एक हराम ली गैरी ही है जिसे शरीयत ने किसी दूसरे के हक की वजह से हराम करार दिया है। अब मसला याद रखना, चोर जिस वक्त चोरी करने जाता है तो ऐन जिस वक्त वो सामान को उठाने लगा तो ये सामान माले मासूम था, ये माले महफूज था, ये किसी दूसरे का हक है, लिहाजा इसका एहतराम जरूरी है, तो ये माले मोहतरम है और माले मासूम है। चोर जब इसको उठाने लगा ऐन इस वक्त इस माल की इस्मत उस बंदे से खत्म होकर अल्लाह की तरफ मुंतकिल हो गई, अब इस माल के मालिक अल्लाह बन गए। मसलन एक चोर जैद के घर दाखिल हुआ, अब मसलन चोर जैद की कोई चीज उठाने लगा है तो वो चीज जैद की ममलूका है, ये चीज मासूम है महफूज है लेकिन जैद के हक की वजह से। लेकिन ऐन जब चोर उसको उठाने लगा अब इसकी इस्मत मुंतकिल हो गई अल्लाह की तरफ, अब ये चीज मासूम है बंदे के हक की वजह से नहीं अल्लाह के हक की वजह से, या अब ये अल्लाह की ममलूक चीज हो गई। बात समझ में आ गई? भाई क्या वजह है कि ऐन चोरी से पहले आप कहते हैं माल की इस्मत बंदे से मुंतकिल हो गई अल्लाह की तरफ? कहते हैं वजह यह है कि अगर आप इस माल की इस्मत बंदे से अल्लाह की तरफ मुंतकिल नहीं मानते तो फिर चोर का हाथ आप नहीं काट सकते, तो फिर चोर का हाथ आप नहीं काट सकते। क्यों नहीं काट सकते? वजह यह, मसलन अगर चोर आया और उसने सामान उठा लिया और आप कहते हैं कि यह माल उठाते वक्त भी किसका है, जैद ही का है, तो फिर मालूम हुआ यह हराम ली आईनी ही नहीं, यह हराम ली गैरी ही है, अपनी जात के एतबार से हराम नहीं है बल्कि जैद के हक की वजह से हराम है। और हराम ली गैरी ही किसे कहते हैं कि वो बाज एतबार से हलाल होता है बाज एतबार से हराम। एक आदमी जैद की गंदुम उठाना चाहता है बगैर इजाजत के, तो ये जैद का हक है उसके लिए ये गंदुम उठाना हराम है, लेकिन ये हराम ली गैरी ही है। हराम ली गैरी ही का क्या माना,
यानी अपनी जात के एतबार से तो यह हराम नहीं, यह तो खाने वाली चीज है, लेकिन गैर यानी जैद के हक की वजह से यह हराम है। तो मालूम हुआ जो हराम ली गैरी ही होती है वह अपनी जात के एतबार से हलाल होती है, मुबाह होती है, अपनी जात के एतबार से मुबाह। या यूं कहो हराम ली गैरी ही जो है वह बाज एतबार से हराम है, बाज एतबार से हराम नहीं। खुद गंदुम की जात के एतबार से देखें तो उस गंदुम का खाना जायज है, लेकिन जैद का हक होने के एतबार से देखें तो इसका खाना जायज नहीं। तो हराम ली गैरी ही जो होती है वह बाज एतबार से हराम है, बाज एतबार से हराम नहीं। या यूं कहो बाज एतबार से वह हलाल है, बाज एतबार से वह हलाल नहीं। तो चोर भी जब माल उठाकर ले जाने लगा, अगर आप अभी भी कहते हैं इस माल का मालिक जैद ही है तो यह हराम ली गैरी ही हुआ। मालूम हुआ चोर के लिए बाज एतबार से इसको उठाना जायज है और बाज एतबार से उठाना जायज नहीं। बाज एतबार से चोर के लिए यह हलाल है, बाज एतबार से चोर के लिए यह हराम है। जब बाज एतबार से यह चीज चोर के लिए हलाल है तो अब आप चोर का हाथ नहीं काट सकते, क्योंकि शुबा आ गया। हाथ तो तब काटेंगे जब चोर ऐसी चीज को लेकर जाए जो हर एतबार से उसके लिए हराम हो। जब वो एक ऐसी चीज ले जा रहा है जो बाज एतबार से उसके लिए जायज है तो फिर उसका तो आप हाथ नहीं काट सकते, क्योंकि शुबा आ गया हलाल होने का। बात समझ में आ गई? तो लिहाजा हम कहते हैं कि ऐन जिस वक्त चोर चोरी करने लगता है और उस चीज को उठाने लगता है तो उस वक्त उस माल की इस्मत बंदे से मुंतकिल हो जाती है अल्लाह की तरफ। अब यह माल मासूम है लेकिन अल्लाह के हक के तौर पर, न कि बंदे के हक के तौर पर। तो जब अल्लाह के हक के तौर पर माल मासूम हो गया, अब यह हराम लिआइनी ही बन गया। अब जब यह हराम ले आईनी ही बन गया, अब चोर इसको लेकर जाता है तो अब यहां किसी एतबार से भी हलाल होने का शुबा नहीं। जब किसी भी एतबार से हलाल होने का शुबा नहीं तो अब इस चोर का हाथ काटा जाएगा। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं वली अन अल महल्ला ला यबका मासूमन हक्कन लिल अब्दी। वली अन अल महल्ला, महल से मुराद है वो माले मसरूक, भाई जिसको चुराया जा रहा है वो माले मसरूक, क्योंकि वो महल है चोरी का, उसको चुराया जा रहा है। कहते हैं वली अन अल महल्ला, इसलिए क्योंकि वो माले मसरूक जो है, ला यबका मासूमन हक्कन लिल अब्दी, ये बंदे के हक के तौर पर अब मासूम होकर बाकी नहीं, ये बंदे के हक के तौर पर मासूम होकर बाकी नहीं रहा, बल्कि ये अल्लाह के हक के तौर पर मासूम होकर बाकी है। भाई तो ये माना है वली अन्नल महल्ला, इसलिए क्योंकि वो माले मसरूक जो है, ला यबका मासूमन हक्कन लिल अब्दी, ये माले मसरूक जो है ये बंदे के हक के तौर पर मासूम होकर बाकी नहीं है। इज लौ बकिया, इसलिए क्योंकि ये बंदे के हक के तौर पर मासूम होकर बाकी रहता, लकान मुबाहन फी नफसी ही, फिर तो ये अपनी जात के एतबार से मुबाह होता, अपनी जात के एतबार से मुबाह और गैर की वजह से गैर मुबाह होता। तो कहते हैं इज लौ बकिया, तो अगर यह माल जो है बंदे के हक होने के एतबार से मासूम होकर बाकी रहता, लकान मुबाहन फी नफसी ही, तो यह अपनी जात के एतबार से मुबाह होता, फयन तफिल कत उली शुबहती, तो हाथ का काटना मुंतफी हो जाता शुबे की वजह से, क्योंकि ये तो अपनी जात के एतबार से मुबाह है, जब मुबाह है फिर तो हाथ नहीं काटना चाहिए, शुबा आ गया भाई। तो कहते हैं फयन तफिल कत उली शुबहती, तो हाथ का काटना मुंतफी हो जाता शुबे की वजह से, अगर ये मुबाह होकर बाकी रहता तो हाथ का काटना मुंतफी हो जाता शुबे की वजह से, फयसीर मुहर्रमन हक्कन लिशरई, तो ये माल जो है फयसीर मुहर्रमन, तो ये माल हराम हुआ, हक्कन लिशरई, शरीयत के हक के तौर पर। अब ये माल हराम है शरीयत के हक के तौर पर, यानी अब इसकी इस्मत अल्लाह की तरह मुंतकिल हो गई, अब ये हराम लिगैरी ही ना रहा बल्कि ये हराम लिआइनी ही बन गया। तो कहते हैं फयसीर मुहर्रमन हक्कन लिशरई, तो ये माल जो है अब बतौर शरीयत के हक के हराम हो गया, कल मैतती, जैसे कि मुर्दार है, जैसे मुर्दार का खाना मना है, और वो क्यों मना है, शरीयत के हक के तौर पर मना है भाई। तो कहते हैं कल मैतती, जैसे कि मुर्दार है, वला जमान फी ही, और शरीयत के हक में तो कोई जमान नहीं होता, शरीयत के हक के अंदर तो कोई जमान नहीं होता, क्योंकि अल्लाह जमान के मोहताज नहीं है भाई। तो कहते हैं वला जमान फी ही, और अल्लाह के हक के अंदर तो कोई जमान नहीं होता, इल्ला अन्नल इस्मत ला यजहरु सुकूतुहा फी हकिल इस्तेहलाकी। यहां से एक एतराज का जवाब दे रहे हैं साहिब हिदाया। एतराज ये कि आपने हमें बताया कि जब चोर चोरी करने लगता है तो ऐन चोरी के वक्त उस माल की इस्मत अल्लाह की तरह मुंतकिल हो जाती है, जब माल की इस्मत अल्लाह की तरह मुंतकिल हो गई है तो फिर तो इसका जमान नहीं आना चाहिए, तो फिर इस्तेहलाक की सूरत में कैसे जमान आ सकता है। हालांकि इमाम साहब से एक रिवायत यह है कि इस्तेहलाक की सूरत में जमान आएगा। एतराज समझ में आया कि जब इस माल की इस्मत अल्लाह की तरफ मुंतकिल हो गई है, अल्लाह तो जमान के मोहताज नहीं, लिहाजा जमान नहीं आना चाहिए। लेकिन इमाम साहब से एक रिवायत है जो ऊपर गुजर गई, हसन इब्ने ज़ियाद रहमतुल्लाह इमाम साहब से रिवायत करते हैं कि इस्तेहलाक की सूरत में माल मसरूक का जमान आएगा। तो अब उसका जवाब देने लगे, कहते हैं इल्ला अन्नल इस्मत ला यज़हरु सुकूतुहा फी हक़िल इस्तेहलाकी, मगर एक बात है कि अन्नल इस्मत के इस माल की जो इस्मत है, ला यज़हरु सुकूतुहा, इस इस्मत का साकित होना जाहिर नहीं होता, फी हक़िल इस्तेहलाकी, इस्तेहलाक के हक में। माल की इस्मत साकित तो हुई है लेकिन इस्तेहलाक के हक में इस्मत का साकित होना जाहिर नहीं। यूं समझो इस्तेहलाक के हक में माल की इस्मत साकित ही नहीं हुई। तवज्जो है, फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं इल्ला अन्नल इस्मत, मगर यह कि इस माल की जो इस्मत है, ला यजहरु सुकूतुहा, उस इस्मत का साकित होना जाहिर नहीं होता, फी हकिल इस्तेहलाकी, उस माल के इस्तेहलाक के हक में, लिअन्नहु फिअलुन आखरु गैरु सरिकती, इसलिए क्योंकि इस्तेहलाक चोरी के अलावा एक दूसरा फेल है। चोरी के अंदर तो माल की इस्मत साकित हो गई थी लेकिन उसके बाद चोर इस्तेहलाक करता है, तो इस्तेहलाक यानी माल को जाया करना या खर्च करना, वो तो चोर का एक अलग फेल है। तो चोरी के हक में माल की इस्मत साकित हो गई थी। क्यों साकित हुई थी? क्योंकि अगर माल की इस्मत आप साकित नहीं करेंगे तो चोर का हाथ नहीं काट सकते आप। आपको कहना पड़ेगा माल की इस्मत साकित होकर किसकी तरफ मुंतकिल हो गई? अल्लाह की तरफ। अगर आप ऐसा नहीं कहते फिर तो वहां हलाल होने का शुबा आता है भाई, क्योंकि वो हराम ली गैरी ही है भाई। बात समझ में आ गई। लिहाजा चोरी के अंदर तो कता के लिए जरूरी है कि कहा जाए कि माल की इस्मत मुंतकिल हो गई है अल्लाह की तरफ, लेकिन इस्तेहलाक तो एक अलग फेल है, वहां कोई जरूरत नहीं है इस्मत को साकित करने की। यह माना है लिअन्नहु फिअलुन आखरु गैरु सरिकती, इसलिए क्योंकि इस्तेहलाक तो चोरी के अलावा एक दूसरा फेल है, वला जरूरत फी हक़िही, और इस्तेहलाक के हक में कोई जरूरत नहीं है, इस्मत को साकित करने की कोई जरूरत नहीं है। चोरी के अंदर जरूरत थी, वो उसके बगैर तो कता ही साबित नहीं हो सकता था। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वला जरूरत फी हक़िही, और इस्तेहलाक के हक में कोई जरूरत नहीं है कि माल की इस्मत को साकित किया जाए। वह कदा शुबहतु तोता बरूफी मा हुआ सब अबू दूना गैरी ही, और इसी तरह शुबहा जो है वो मोतबर है फी मा हुआ सब अबू, उस चोरी में जो कता का सबब है, दूना गैरी ही, ना कि उसके अलावा के अंदर। भाई देखिए, हमने क्या कहा कि ऐन चोरी से पहले माल की इस्मत अल्लाह की तरह मुंतकिल हो गई ताकि यह चीज हराम ली आईनी ही बन जाए, वरना तो यह हराम ली गैरी ही है, और हराम ली गैरी ही के अंदर तो मुबाह होने का भी शुबा होता है, उसमें तो फिर हाथ नहीं काटा जा सकता। तो हमने कहा ऐन चोरी से पहले इस माल की इस्मत अल्लाह की तरह मुंतकिल हो गई, यानी यह हराम ली आईनी ही बन गया, हराम ले आईनी ही बन गया, लिहाजा अब चोर का हाथ काटा जाएगा। तवज्जो है। तो मालूम हुआ चोरी के अंदर शुबा नहीं आना चाहिए जी। चोरी के अंदर अगर शुबा आ गया तो फिर कता नहीं हो सकेगा। और शुबा हमने किस तरह खत्म किया कि माल की इस्मत हमने अल्लाह की तरह मुंतकिल कर दी, वरना तो शुबा पाया जाता जी। उस चीज के मुबाह होने का शुबा पाया जाता, तो लिहाजा चोरी के फेल में शुबा नहीं होना चाहिए। चोरी के बाद किसी और फेल में शुबा आ जाए तो उससे कोई खराबी नहीं आती जी। चोरी के अंदर शुबा नहीं होना चाहिए, भाई हाथ काटने का सबब क्या है? चोरी है, तो चोरी के अंदर शुबा नहीं आना चाहिए
जी।
चोरी के बाद किसी और फेल में शुबा आ जाए तो उससे कोई हरज नहीं है, यानी इस्तेहलाक के अंदर अगर शुबा भी आ जाए तो उससे कोई खराबी लाजिम नहीं आती। बात समझ में आ रही है? यह माना है वकदा शुबहतु तुअतबरुफी मा हुआ सबबू। भाई देखिए शुबह से क्या मुराद है? मुबाह होने का शुबा, तो कहते हैं वकाजा शुबहतु, और इसी तरह मुबाह होने का जो शुबा है तो अतबरू, इसका एतबार किया जाएगा फी मा हुआ सबबू, उस चोरी के अंदर जो इस कता का सबब है। इस मुबाह होने का शुबा उस चीज के अंदर मुअतबर है जो कता का सबब बन रही है, वहां शुबा नहीं आना चाहिए। दून गैर ही, ना कि उसके अलावा, यानी इस्तेहलाक के अंदर शुबे का कोई एतबार नहीं है। भाई आगे देखिए वह वजहुल मशहूरी, और मशहूर कौल की वजह यह है। भाई बतलाया था इमाम साहब से दो रिवायतें हैं, एक रिवायत जो हसन इब्ने ज़ियाद रहमहुल्ला की है उसके मुताबिक इस्तेहलाक के अंदर जमान आएगा और हलाक के अंदर जमान नहीं। तो इस्तेहलाक में क्यों जमान आएगा, वो वजह बयान कर दी कि चोरी के अंदर शुबा नहीं आना चाहिए। इस्तेहलाक तो एक अलग फेल है, अगर उसमें शुबा आ भी जाए तो कोई हरज नहीं है। लेकिन इमाम साहब का मशहूर कौल तो यह है कि हलाक हो या इस्तेहलाक किसी सूरत में भी जमान नहीं आएगा। अब उसकी वजह जिक्र करने लगे हैं, तो कहते हैं वजहुल मशहूरी, और कौले मशहूर की वजह यह है कि अन्नल इस्तेहला का इतमामुल मकसूदी। भाई हासिल कलाम समझ लें पहले। कौले मशहूर की वजह यह है, कहते हैं कि ये जो इस्तेहलाक है ये भी चोरी का हिस्सा है। इस्तेहलाक यानी चोर ने उस माल को ले जाकर खर्च कर दिया, तो ये भी चोरी का हिस्सा है। भाई किस तरह चोरी का हिस्सा है? अभी आपने हमें बताया ये अलग फेल है। कहते हैं नहीं, बाज एतबार से देखें तो ये चोरी का ही हिस्सा है। चोरी का हिस्सा इस तरह कि चोर गया चोरी करने, मुझे बताइए क्या उसका मकसद उस माल को लाकर वैसे ही रखना था, या इस माल के जरिए वो अपनी हाजतें पूरी करना चाहता था? वो अपनी हाजतें पूरी करना चाहता था। मालूम हुआ इस चोर का मकसूद सिर्फ चोरी नहीं है बल्कि चोरी के बाद उस माल से फायदा उठाना भी है। तो मालूम हुआ फायदा उठाना जो है यानी माल को खर्च करना, यह भी चोरी ही का हिस्सा है। ये भी चोरी ही का हिस्सा है। तो जब यह चोरी का हिस्सा है तो लिहाजा इसके अंदर भी शुबा नहीं आना चाहिए। इसके अंदर भी, चोरी के अंदर भी शुबा नहीं, माल की इस्मत अल्लाह की तरफ मुंतकिल हो गई। और इस्तेहलाक के अंदर भी शुबा नहीं आना चाहिए कि अगर आप इस्तेहलाक के अंदर जमान वाजिब करेंगे तो वहां शुबा आ जाएगा, क्योंकि आप पीछे पड़ चुके, जमान आए तो फिर कता नहीं हो सकता। जमान आए तो कता, तो इस्तेहलाक के अंदर भी अगर आप जमान वाजिब करेंगे फिर तो कहना पड़ेगा कि चोर उस माल का मालिक बन गया। जब माल का मालिक बन गया था तो गोया उसने अपना माल उठाया था, जब अपना माल उठाया था तो शुबा आ गया, फिर तो इसका हाथ नहीं काटना चाहिए। तो कहते हैं वजहुल मशहूरी, और मशहूर कौल की वजह यह है कि अनल इस्तेहलाक का इतमामुल मकसूदी, कि इस्तेहलाक जो है यानी माल को हलाक करना और उसको खर्च करना, इतमामुल मकसूदी, वो मकसूद को पूरा करना है
जी।
वो अपने मकसूद को पूरा करना है। फयुअतबर शुबहतु फीही, लिहाजा उसके अंदर शुबा आए तो वो भी मोतबर होगा
जी।
उसके अंदर भी शुबा मोतबर होगा, उसमें भी शुबा नहीं आना चाहिए, और शुबा तभी नहीं आएगा जब आप उसमें जमान वाजिब ना करें। तो कहते हैं फयुअतबरु शुबहतु फीही, तो इस्तेहलाक के अंदर भी शुबा मोतबर होगा, जैसे चोरी में शुबा मोतबर था इसी तरह इस्तेहलाक में भी शुबा मोतबर होगा। वकदा यजहरु सुकूतुल इस्मत फी हक़िज़ ज़मानी, और इसी तरह इस्मत का साकित होना जाहिर होगा फी हक़िज़ ज़मानी, जमान के हक में, यानी इस्तेहलाक के अंदर भी माल की इस्मत, माल की इस्मत साकित शुमार की जाएगी ताकि चोर पर जमान ना आए, क्योंकि अगर जमान आएगा तो फिर तो शुबा आ जाएगा। यह माना है वकजा यजहरु सुकूतुल इस्मत फी हक जमानी, और इसी तरह इस माल की इस्मत का साकित होना जाहिर होगा कि इस माल की इस्मत साकित हो गई है फी हक जमानी, जमान के हक में, तवज्जो है भाई, देखिए वकजा यजहरु सुकूतुल इस्मत फी हक जमानी, कि इस्मत का साकित होना जाहिर हो जाएगा, फी हक जमानी जमान के हक में, यानी जमान नहीं आएगा। यह इस्तेहलाक की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, इस्तेहलाक के अंदर भी जमान नहीं आना चाहिए वरना शुबा आ जाएगा। तो ये इस्तेहलाक की बात चल रही है, अगरचे इस जुमले के अंदर इस्तेहलाक का जिक्र नहीं, लेकिन आप जहन में रखें कि ये किसकी बात चल रही है, इस्तेहलाक। फिर जरा तर्जमा देखें, वकजा यजहरु सुकूतुल इस्मती, बल्कि यहां इस्तेहलाक का लफ्ज भी लिया है तर्जमे में, वकजा यजहरु सुकूतुल इस्मती, और इसी तरह इस्तेहलाक के अंदर भी इस्मत का साकित होना जाहिर होगा, फी हक जमानी जमान के हक में, कि जमान नहीं आएगा इस्तेहलाक के अंदर भी। बात समझ में आ गई। आगे देखिए, लिअन्नहु मिन जरूरात सुकूतिहा फी हक़िल हलाकी, लिअन्नहु, ये अन्नहु की हा जमीर, ये जो पीछे आया इस्मत का साकित होना, पीछे जो आया सुकूतुल इस्मत, इस्मत का साकित होना, और कौन से इस्मत का साकित होना, इस्तेहलाक के मसले में, तो लिअन्नहु की हा जमीर लौटा दें सुकूतुल इस्मति फी हक़िल इस्तेहलाकी। तो कहते हैं लिअन्नहु, इसलिए क्योंकि इस्तेहलाक के हक में इस्मत का साकित होना मिन जरूराती सुकूतिहा फी हक़िल हलाकी, हलाक के हक में इस्मत के साकित होने की जरूरत में से है। इधर देखिए, जरा मुश्किल जगह है भाई, बात चल रही है कि इस्तेहलाक की सूरत में भी जमान नहीं आएगा कौल मशहूर के मुताबिक, तो उसकी वजह जिक्र कर रहे हैं साहिब हिदाया। एक वजह तो जिक्र कर दी कि इस्तेहलाक भी चोरी का हिस्सा है, तो चोरी के अंदर शुबा मोतबर है तो इस्तेहलाक में भी शुबा मोतबर है, लिहाजा दोनों के अंदर इस्मत साकित होनी चाहिए, दोनों के अंदर माले मसरूका की इस्मत साकित होनी चाहिए। और नीज अब दूसरी दलील जिक्र कर रहे हैं, दूसरी दलील यह है कि जब हलाक की सूरत में जमान नहीं आता तो इसके साथ जरूरी है कि इस्तेहलाक की सूरत में भी जमान नहीं आना चाहिए। तवज्जो है, मुश्किल जगह है, जब हलाक की सूरत में जमान नहीं आता तो इसके साथ जरूरी है कि इस्तेहलाक की सूरत में भी जमान नहीं आना चाहिए। तवज्जो है, फिर दोहराएं, हलाक की सूरत में जमान नहीं आता तो इसके साथ जरूरी है कि इस्तेहलाक की सूरत में भी जमान नहीं आना चाहिए। भाई किस तरह, कहते हैं देखिए, अगर आप हलाक की सूरत में जमान वाजिब नहीं करते और इस्तेहलाक की सूरत में जमान वाजिब करते हैं, मालूम हुआ वो माल जो चोर ने चोरी किया था वो हलाक की सूरत में माले मासूम नहीं, क्योंकि जमान नहीं आएगा, और इस्तेहलाक की सूरत में वो माले मासूम है क्योंकि जमान आ रहा है, अगर आप जमान मानते हैं तो। मालूम हुआ वो माल जो चोर ने चोरी किया वो बाज एतबार से मासूम है, बाज एतबार से मासूम नहीं। भाई देखिए, चोर ने जो माल चोरी किया, अगर आप ये कहते हैं हलाक के अंदर तो जमान नहीं आएगा लेकिन इस्तेहलाक के अंदर जमान आएगा, तो मालूम हुआ ये माल जिसको चोर चोरी कर रहा है बाज एतबार से ये मासूम है, बाज एतबार से मासूम नहीं। अगर चोर के पास ये माल हलाक हो गया तो चोर पर जमान नहीं आएगा, मालूम हुआ यह माल मासूम नहीं। और अगर चोर ने खुद हलाक किया तो आप कहते हैं चोर पर जमान आएगा, मालूम हुआ इस सूरत में यह माल मासूम है, हलाक की सूरत में यह माल मासूम नहीं क्योंकि जमान नहीं आ रहा, और इस्तेहलाक की सूरत में यह माल मासूम है क्योंकि जमान आ रहा है। तो मालूम हुआ यह माल मसरूक जो है बाज एतबार से देखें तो यह माल मासूम है, बाज एतबार से देखें तो यह माल मासूम नहीं है। अब आइए जरा इस जमान की तरफ आ जाइए, जब इस्तेहलाक की सूरत में चोर जमान देगा जी। जब इस्तेहलाक की सूरत में चोर जमान देगा, यह किस चीज का जमान दे रहा है, वो जो माल इसने चोरी किया था और उस माल की क्या सिफत थी, वो बाज एतबार से मासूम था और बाज एतबार से मासूम नहीं था, और ये जो जमान दे रहा है ये हर एतबार से मासूम है जी। भाई जो माल चुराया जाए उसकी इस्मत खत्म होती है, बाकी तो हर आदमी का माल मासूम है, महफूज है, किसी दूसरे को उठाने की इजाजत नहीं। तो चोर जो जमान दे रहा है ये किस किस्म का माल है, ये माल मासूम है। तो जो जमान दे रहा है यह है माले मासूम, और जो माल इसने चोरी किया था वो बाज एतबार से तो मासूम है, बाज एतबार से मासूम नहीं, तो लिहाजा इस जमान की उस माल के साथ मुमासलत ही नहीं है। हालांकि जमान तो उस माल के मुमासिल होना चाहिए जिसका जमान दिया जा रहा है।
जी।
याद रखो, जिस चीज का जमान दिया जा रहा है यह जमान उस चीज के मुमासिल होना चाहिए। यह बात नस से साबित है, कुरान से साबित है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, फमनी अतदा अलैकुम, जो कोई तुम पर ज्यादती करे, फमनी अतदा अलैकुम, जो शख्स तुम पर ज्यादती करे, फअतदू अलैही, तो तुम भी उस पर ज्यादती करो, बिमिस्ल मा अतदा अलैकुम, उसी के मिसल जो ज्यादती उसने की थी। अगर कोई तुम्हारे साथ ज्यादती करे तो तुम भी उसी ज्यादती के बराबर उस पर ज्यादती कर सकते हो, उससे जायद की इजाजत नहीं। और देखो कुरान के अंदर एक शख्स ने दूसरे के साथ ज्यादती की है तो दूसरा शख्स जो है वो उस ज्यादती का बदला देता है, लेकिन उस बदले को भी ज्यादती के लफ्ज से ताबीर कर दिया गया, क्योंकि पहले शख्स ने जो किया है वो तो है ज्यादती और दूसरा शख्स तो उसका बदला ले रहा है। बदले को तो ज्यादती नहीं कहा जाता, लेकिन चूंकि कुरान में साथ ही ज्यादती का लफ्ज जिक्र था तो इस दूसरे को भी ज्यादती के लफ्ज से ताबीर कर दिया गया। हालांकि जो दूसरा शख्स कर रहा है यह ज्यादती नहीं है, यह उस ज्यादती का बदला ले रहा है। तो बहरहाल इस नस से इतनी बात साबित हो गई कि अगर तो आपके साथ कोई शख्स ज्यादती करे तो आप उसके बराबर बदला ले सकते हैं, उससे ज्यादा बदला नहीं ले सकते। मालूम हुआ जमान के अंदर मुमासलत शर्त है, यह बात नस से साबित हो गई। जमान उस चीज के मिसल होना चाहिए हर एतबार से, लेकिन यहां पर अगर आप चोर पर जमान वाजिब करते हैं इस्तेहलाक की सूरत में, तो चोर जो ये जो माल अदा कर रहा है ये हर एतबार से माले मासूम है
जी।
और वो माल जो चोर ने चोरी किया था वो बाज एतबार से मासूम है, बाज एतबार से मासूम नहीं। इस्तेहलाक की सूरत में आपने उसको मासूम करार दिया है और हलाक की सूरत में आपने उसे गैर मासूम करार दिया है, तो मालूम हुआ जमान की उस माल के साथ मुमासलत नहीं। जब जमान की उसके साथ मुमासलत नहीं है तो फिर तो जमान हो ही नहीं सकता। जमान के अंदर तो मुमासलत जरूरी है भाई। बात समझ में आ गई। तो यह माना है लिअन्नहु मिन जरूराती सुकूतिहा फी हक़िल हलाकी। लिअन्नहु, मैंने बतलाया ये अन्नहु की हा जमीर किसको राजे करें, इस्तेहलाक की वजह से इस्मत का साकित होना। लिअन्नहु, इसलिए क्योंकि इस्तेहलाक की वजह से इस्मत का साकित होना, मिन जरूराती सुकूतिहा फी हक़िल हलाकी, यह हलाक के हक में इस्मत के साकित होने की जरूरत में से है। हलाक के अंदर अगर आप इस्मत को साकित करार देते हैं तो इस्तेहलाक के अंदर भी आपको इस्मत को साकित करार देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप जमान वाजिब करेंगे तो जमान की उस माल के साथ मुमासलत न रहेगी। हालांकि नस से मालूम हुआ है कि जमान के अंदर मुमासलत शर्त है भाई। तो यह माना है ले अन न हो, इसलिए क्योंकि इस्तेहलाक के हक में इस्मत का साकित होना, मिन जरूरात सुकूत हा फी हक इल हलाकी, यह हलाक के हक में इस्मत के साकित होने के साथ जरूरी है। लेतफा इल मुमासलत, मुमासलत न होने की वजह से अगर आप हलाक में जमान वाजिब नहीं करते और इस्तेहलाक में आप जमान वाजिब करते हैं तो मालूम हुआ माले मसरूक मिन वजह मासूम है और मिन वजह मासूम नहीं। और जब आप इस्तेहलाक के अंदर जमान देंगे तो इस जमान की तो उस माले मसरूक से मुमासलत नहीं है, हालांकि मुमासलत शर्त थी। ये जमान ये तो हर एतबार से मासूम और महफूज है, और वो जो माल था वो तो मिन वजह मासूम है और मिन वजह मासूम नहीं, तो मुमासलत नहीं। जब मुमासलत नहीं तो जमान नहीं दिया जा सकता यहां पर। जमान के अंदर तो मुमासलत जरूरी है, लिहाजा जब हलाक की सूरत में आप कहते हैं माल की इस्मत साकित हो गई तो इसके साथ जरूरी है आपको यह भी कहना पड़ेगा कि इस्तेहलाक की सूरत में भी माल की इस्मत साकित हो गई। बात समझ में आ गई। और नीज हम इमाम शाफई रहमतुल्लाह को जवाब देते हैं,
इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने जिक्र किया था कि कता और जमान जमा हो सकते हैं, इसलिए क्योंकि ये दोनों अलग अलग हक हैं और दोनों का सबब अलग अलग है। कता इसलिए चोर पर वाजिब होगी इसलिए क्योंकि इसने जुर्म किया है, शरीयत ने इसको चोरी से मना किया था और इसने चोरी वाला फेल किया है, और इस पर माल का जमान भी आएगा इसलिए क्योंकि वह जमान जो है वह बंदे का हक है और इसने एक बंदे का सामान उठाया था, लिहाजा अब इस पर जमान भी वाजिब होगा। तो हम जवाब देते हैं कि नहीं, कता और जमान इकट्ठे नहीं हो सकते, और यहां पर दो हक नहीं है बल्कि एक ही हक है, यहां दो हक नहीं है बल्कि एक ही हक है, क्योंकि हमने आपको बतला दिया कि ऐन चोरी के वक्त माल की इस्मत बंदे से मुंतकिल हो जाती है अल्लाह की तरफ, तो गोया ये जो माल उठा रहा है ये बंदे का माल नहीं उठा रहा बल्कि अल्लाह का माल उठा रहा है, तो यहां पर सिर्फ अल्लाह का हक है, बंदे का कोई हक ही नहीं है, तो लिहाजा इसके अंदर कता जब आ जाए तो जमान नहीं आ सकता, और अगर जमान आएगा तो फिर कता नहीं आ सकती, जबकि इसके मुकाबले में हराम के अंदर किसी के ममलूका शिकार को कत्ल करना या जिम्मी की ममलूका शराब को पीना, वहां दो दो हक हैं, बंदे का हक अलग है और शरीयत का हक अलग है, लेकिन यह चोरी के मसले में सिर्फ एक ही हक है और वो हक़े शरीयत है, लिहाजा यहां पर जब कता हो जाए तो जमान नहीं आ सकता। बात समझ में आ गई। आगे देखिए भाई, قال ومن سرق سرقات فقطع في احداها فهو لجميعها ولا يضمن شيئا عند ابي حنيفه رحمه الله وقال يضمن كلها الا التي قطع لها।
भाई यहां से साहिब हिदाया आपको बतलाएंगे कि अगर एक शख्स ने कई चोरियां की हैं और फिर किसी एक चोरी के अंदर उसका हाथ काटा गया तो ये उन तमाम चोरियों की जजा हो जाएगी, और नीज आप जानते हैं जब चोर का हाथ काट दिया जाए तो उस पर जमान नहीं आता, तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इस चोर पर भी अब कोई जमान नहीं है, जितनी भी इसने चोरियां की सबकी जजा ये हाथ का काटना हो गया। قال صاحب قدوری فرماتے ہیں ومن سرق سرقات اور جس شخص نے کئی چوریاں کی فقطع في احداها پھر ایک چوری کے اندر اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا فَهُوَ لِجَمِيعِهَا تو یہ ہاتھ کا کاٹنا ان سب چوریوں کے لیے ہو جائے گا وَلَا يَزْمَنُ شَيْئًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ اور وہ شخص کسی چیز کا ضامن نہیں ہوگا امام صاحب کے نزدیک وَقَالَ اور صاحبین فرماتے ہیں يَزْمَنُ كُلَّهَا کہ وہ ان تمام چوریوں کا ضامن ہوگا إِلَّا الَّتِي قُطِعَ لَهَا سوائے اس چوری کے جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹا گیا है। साहिबैन फरमाते हैं जिस चोरी के अंदर इसका हाथ काटा गया है उस चोरी का जमान इस पर नहीं आएगा, बाकी तमाम चोरियों का जमान इस आदमी को देना होगा। वमानल मसअलती, यहां से साहिब हिदायत मतन की वजाहत फरमा रहे हैं कि भाई ये जो साहिबैन और इमाम साहिब का इख्तिलाफ है, इमाम साहब फरमाते हैं इस चोर पर कोई जमान नहीं, साहिबैन फरमाते हैं कि जिस चोरी के अंदर हाथ काटा गया है उसके अलावा बाकी तमाम चोरियों का जमान आएगा, तो ये इख्तिलाफ उस सूरत में है जब खुसूमत के वक्त सिर्फ एक मसरूक मिनहू हाजिर था, सिर्फ एक मसरूक मिनहू हाजिर है तो इस सूरत में यह इख्तिलाफ है। कहते हैं वमानल मसअलती, और इस मसले का माना यह है कि इदा हजारा अहदुहुम, जब उन चोरियों वालों में से एक आदमी हाजिर हुआ है, फइन हजरू जमीआ, अगर वो सारे हाजिर हुए हैं, वकुतियात यदुहू लिखुसूमतिहिम, और इन सब की खुसूमत की वजह से चोर का हाथ काटा गया है, तो ला यजमनु शैअन बिल इत्तिफाकी फिस सरिकाति कुल्लिहा, तो फिर ये चोर ला यजमनु शैअन बिल इत्तिफाकी, तो इस सूरत में बिल इत्तिफाक चोर किसी भी चीज का जामिन नहीं होगा, फिर सरिकाती कुल्लिहा तमाम चोरियों में, अगर वो सारे खुसूमत के लिए आए थे तो फिर इस सूरत के अंदर चोर पर किसी चोरी का जमान नहीं आएगा, लेकिन अगर चंद एक हाजिर हुए हैं तो सिर्फ उनके लिए जमान नहीं होगा और बाकियों के लिए जमान होगा। भाई लहुमा, अब साहिबैन की दलील आ गई, साहिबैन क्या फरमाते हैं कि बाकियों के माल का जमान आएगा चोर पर। लहुमा साहिबैन की दलील यह है कि अन्नल हाजिरा लैसा बिन्नाइबिन अनिल गाइबी, कि ये जो हाजिर शख्स है जो खुसूमत कर रहा है लैसा बिन्नाइबिन अनिल गाइबी, ये गाइब से नाइब नहीं है, जो खुसूमत करने के लिए नहीं आए ये उनकी तरफ से नाइब नहीं है। तो कहते हैं लहुमा साहिबैन की दलील यह है कि अन्नल हाजिर लैसा बिन्नाइबिन अनिल गाइबी, कि ये जो हाजिर आदमी है जो खुसूमत कर रहा है ये गाइब आदमियों की तरफ से नाइब नहीं है। वला बुद्द मिनल खुसूमती, और चोरी के अंदर तो खुसूमत का होना जरूरी है, लितज़हरा सारिकतु, ताकि चोरी जाहिर हो जाए। तो जब ये आदमी उनकी तरफ से नाइब नहीं है तो बाकी चोरियां जाहिर भी नहीं हुई, तो मालूम हुआ ये कता सिर्फ इसी चोरी में हुई है, बाकी चोरियों में कता नहीं। जब बाकी चोरियों में कता नहीं तो लिहाजा वहां पर जमान भी साकित नहीं। जमान तो तब साकित होता था जब चोर का हाथ काटा जाता था उस चोरी के अंदर भाई। तो कहते हैं वला बुद्द मिनल खुसूमति लितज़हरा सरिकतु, और खुसूमत का होना जरूरी है ताकि चोरी जाहिर हो जाए। फलम तज़हरिस सरिकतु मिनल गाइबीना, तो गायब लोगों की तरफ से चोरी जाहिर नहीं हुई। फलम यकाइल कत्उ लहा, तो लिहाजा ये हाथ का काटना उन चोरियों के लिए न हुआ। फबकियत अमवालुहुम मासूमतन, तो उनके माल मासूम होकर बाकी रहे, उनके अमवाल मासूम होकर बाकी रहे, क्योंकि उनके लिए तो कता नहीं हुई भाई। व लहू, और इमाम साहेब की दलील यह है कि अन्नल वाजिबा बिल्कुल लिकतउ वाहिदुन हक्कन लिल्लाह ताला। इमाम साहब फरमाते हैं कि अन्नल वाजिबा बिल्कुल्ली, कि इन तमाम चोरियों के जरिए जो चीज वाजिब हुई है कतउ वाहिदुन, वो एक मरतबा का कता है, हक्कन लिल्लाह ताला, बतौर अल्लाह के हक के। जितने भी चोरियां की हैं तो ये जो कता वाजिब हुई है ये उन सब के लिए है भाई। तो कहते हैं वलहू, इमाम साहेब की दलील ये है कि अन्नल वाजिबा बिल्कुल्ली, कि इन तमाम चोरियों के जरिए जो चीज वाजिब हुई है कतउ वाहिदुन हक्कन लिल्लाह ताला, वो एक ही कता है बतौर अल्लाह के हक के। लिअन्न मबनल हुदूद अला तदाखुली, इसलिए क्योंकि हुदूद की बुनियाद तदाखुल पर है। एक ही शख्स कई दफा एक जुर्म करे तो एक ही हद उस पर जारी की जाएगी, क्योंकि हुदूद की बुनियाद तदाखुल पर है। तो यहां पर भी जब एक दफा हाथ काट दिया गया तो यह गुज़श्ता तमाम चोरियों की तरफ से हाथ का काटना हो गया, तो यह तमाम चोरियों की तरफ से यह हाथ का काटना वाक़े हो गया। तो कहते हैं लिअन्न मबनल हुदूद अला तदाखुली, इसलिए क्योंकि हुदूद की बुनियाद तदाखुल पर है। वल खुसूमतु शर्तु ज़ुहूर इंदल काजी, और जो खुसूमत है, साहिबैन क्या फरमाते थे कि खुसूमत एक ने की है तो सिर्फ उसी के माल की इस्मत साकित हुई है, बाकियों के माल की इस्मत साकित नहीं, लिहाजा उनका जमान देना पड़ेगा। तो उसका जवाब दे रहे हैं कि जो खुसूमत की जाती है चोरी के मसले में, वो चोरी के जुहूर के लिए की जाती है, उसकी वजह से कोई कता वाजिब नहीं होता। कता जो वाजिब हुआ है वो तो चोरी के फेल की वजह से वाजिब हो चुका है, खुसूमत की वजह से सिर्फ चोरी काजी के पास जाहिर होती है। तो ये माना है वल खुसूमतु शर्तु ज़ुहूर इंदल काजी, और खुसूमत जो है वो काजी के पास चोरी के जुहूर की शर्त है। अम्मल वुजूब बिल जिनायती, बाकी जो कता का वुजूब है बिल जिनायती, वो तो जिनायत की वजह से है कि इसने जो चोरी की थी। फ़इदा स्तूफिया, तो जब इस कता को वसूल कर लिया गया, फल मुस्तौफा कुल्लुल वाजिबी, तो वो जिसको वसूल किया गया है वो सारा का सारा वाजिब है, यानी यही चीज वाजिब थी, जायद वाजिब ही नहीं है। तो ये माना है फ़इदा स्तूफिया, जब उस कता को वसूल कर लिया गया, फल मुस्तौफा कुल्लुल वाजिबी, तो वो जिसको वसूल किया गया वही सारा वाजिब था, यानी इससे जायद कोई चीज वाजिब नहीं है। अला तारा, क्या आप देखते नहीं, अन्नहु यरजुउ नफ़उहु इलल कुल्ली, कि इस एक मरतबा हाथ के काटने का नफा तमाम चोरियों की तरफ लौटता है। इस एक मरतबा हाथ का काटना, इसका नफा तमाम चोरियों की तरफ लौटता है, अब चोर आइंदा कभी चोरी नहीं करेगा। तो यह माना है अल्लाह तारा, क्या आप देखते नहीं, अन्नहु यरजुउ नफ़उहु इलल कुल्ली, कि यह एक मरतबा हाथ का जो काटना है इसका फायदा लौट रहा है उन तमाम चोरियों की तरफ, कि यह शख्स अब आइंदा चोरी नहीं करेगा। फयकाउ अनिल कुल्ली, तो यह एक ही कता तमाम चोरियों की तरफ से हो गई। वअला हादल खिलाफी, और इसी इख्तिलाफ पर है। इदा कानतिन नुसुबु कुल्लुहा लिवाहिदिन, कि जब सारे निसाब एक ही आदमी के हों। फखासमा फिल बाजी, तो उसने खुसूमत की बास के अंदर। साहिब हिदायत फरमा रहे हैं कि जैसे ऊपर वाले मसले में साहिबैन और इमाम साहिब का इख्तिलाफ था, एक चोर ने कई आदमियों से चोरियां की हैं और एक आदमी ने खुसूमत करके हाथ कटवा दिया, तो इमाम साहब के नजदीक ये सब की जजा हो गई, लिहाजा इस चोर पर किसी चोरी का भी अब जमान नहीं आएगा। जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि जिस चोरी के अंदर खुसूमत की गई है, ये कता सिर्फ उसके लिए है, तो सिर्फ उस माल की इस्मत साकित हुई है, उसका जमान चोर पर नहीं आएगा, जबकि बाकी मालों की इस्मत तो साकित नहीं हुई, बाकियों का जमान चोर को देना पड़ेगा। तो साहिब हिदायत फरमा रहे हैं जिस तरह इस मसले में इख्तिलाफ है, इसी तरह अगर एक चोर ने एक ही आदमी से कई मरतबा निसाब के बकदर माल चोरी किया, मसलन चोर ने जैद से 10 मरतबा चोरी की है और जैद ने सिर्फ एक चोरी के अंदर उसका हाथ कटवाया है, तो साहिबैन फरमाते हैं बाकी चोरियों का जमान इस चोर को देना पड़ेगा। जबकि इमाम साहब फरमाते नहीं, यह कता सब की तरफ से हो गई, लिहाजा कोई जमान चोर पर नहीं आएगा। तो कहते हैं वाला हादल खिलाफी, और इसी इख्तिलाफ पर है। इजा कानत नुसुबु कुल्लु हाली वाहिदिन, जब वो चोरी के निसाब जो है सारे के सारे लिवाहिदिन एक ही आदमी के थे, इन एक ही आदमी से उसने बार बार निसाब के बकदर माल चोरी किया था। फखासमा फिल बाजी, तो उस आदमी ने बाज के अंदर खुसूमत कर ली। तो इस मसले में भी साहिबैन और इमाम साहिब का इसी तरह इख्तिलाफ है। बात समझ में आ गई, हल हो गया। चलिए बस, बिहादा हुआ अल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।